आगे सबक देखिए भाई। वकद यतअद्दुल खबर मिन गैर तअद्दुदिल मुखबर अन्हु फयकून उस्नैन फसाइदा وذلك التعدد إما بحسب اللفظ والمعنى جميعا ويستعمل ذلك على وجهين بالعطف مثل زيد عالم وعاقل وبغير العطف مثل زيد عالم عاقل। गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा कि कुछ जगह हैं जहां पर मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब है भाई, और चार जगह साहिब काफिया ने जिक्र की। पहली जगह वो कि जब मुब्तदा मुश्तमिल हो ऐसे माना पर जो सदारत कलाम को चाहता हो, जैसे मन अबू का, या वो मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हो और नीज कोई करीना भी मौजूद न हो, या दोनों मुब्तदा और खबर जो हैं उन दोनों में तख्सीस हो भाई, दोनों नकिरा हो लेकिन दोनों में तख्सीस हो और कोई करीना भी मौजूद न हो कि कौन मुब्तदा है और कौन खबर, तो इन तीनों सूरतों में मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब है भाई। और चौथी सूरत जो जिक्र की जिसमें मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब है कि खबर जो है वो मुब्तदा का फेल हो, यानी वो सिफत बिहाल ही हो, सिफत बिहाल मुतअल्लिक ही ना हो भाई, तो उसमें भी मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब है। इसलिए क्योंकि अगर आप उस फेल को मुब्तदा पर मुकद्दम करेंगे तो इस सूरत में या तो वो फेल मुफरद होगा या तस्निया या जमा। अगर वो फेल मुफरद है, मसलन जैदुन कामा था, फिर कामा को मुकद्दम कर दिया कामा जैदुन, तो अब ये जैदुन मुब्तदा मुअख्खर है लेकिन इसका इल्तिबास किसके साथ लाजिम आ रहा है, फाइल के साथ। सुनने वाला यही समझेगा कि ये कामा फेल है और जैदुन उसका फाइल है। दूसरी सूरत है तस्निया और जमा वाली कि ये फेल जो है तस्निया या जमा हो, जैसे अज़ैदानी कामा या अज़ैदूना कामू। तो यहां देखो इसके अंदर अगर आप ये जो मुब्तदा है अज़ैदानी और अज़ैदूना इनको आप मुअख्खर करेंगे और फेल को मुकद्दम करेंगे और यूं कहेंगे कामा अज़ैदानी या कामू अज़ैदूना, तो इस सूरत में ये जो मुब्तदा मुअख्खर है इसका इल्तिबास बदल के साथ लाजिम आएगा, फाइल के साथ नहीं, क्योंकि ये फेल तस्निया और जमा है और फेल तस्निया या जमा हो तो वो इसमें जाहिर को रफा नहीं दे सकता। तो कामा अज़ैदानी, तो इस अज़ैदानी का इल्तिबास किसके साथ आ रहा है, बदल के साथ। और कामू अज़ैदूना, इस अज़ैदूना का इल्तिबास भी किसके साथ लाजिम आ रहा है, बदल के साथ। हां अलबत्ता बाज़ उलमा के नजदीक जब ऐसी इबारत आए जिसके अंदर फेल तस्निया या जमा हो तो फिर इस सूरत में वो जो अलिफ और वाव है इसको वो फाइल नहीं बनाते, इनको वो जमीरें नहीं करार देते, बल्कि अलिफ को तस्निया की अलामत करार देते हैं और वाव को जमा की अलामत। तो इस सूरत में फिर आगे आने वाले इसमें जाहिर को वो फाइल बनाते हैं, कामा अज़ैदानी। वो कहते हैं कामा के अंदर ये जो अलिफ है ये तस्निया की अलामत है, ये सिर्फ ये बतला रहा है कि इसका इसनाद आगे तस्निया की तरफ है, यानी अज़ैदानी जो इसमें जाहिर है। और कामू अज़ैदूना, वो उलमा फरमाते हैं कि ये जो कामू के अंदर वो है ये सिर्फ जमा की अलामत है, ये सिर्फ ये बतला रहा है कि आगे वो इसमें जाहिर जो इसका फाइल बन रहा है वो जमा है भाई। ये कहते हैं इसी तरह है जैसे जराबत हिंदुन, इस जराबत के अंदर जैसे ये ता जो है तानीस की अलामत है, ये सिर्फ इतना बताती है कि इस फेल का इसनाद किसी मुअन्नस जात की तरफ किया जा रहा है, तो जैसे जराबत के अंदर ता सिर्फ तानीस की अलामत है फाइल नहीं, इसी तरह वो कहते हैं ये कामा अज़ैदानी और कामू अज़ैदूना इसके अंदर अलिफ और वाव ये भी सिर्फ तस्निया और जमा की अलामतें हैं भाई। तो इन उलमा के नजदीक ये अज़ैदानी और अज़ैदूना ये फाइल बन सकते हैं, तो इस सूरत में फिर ये मुब्तदा का इल्तिबास फाइल के साथ लाजिम आता है उन उलमा के नजदीक। बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिबे काफिया ने कुछ वो जगह जिक्र की थी जहां पर खबर को मुकद्दम करना वाजिब है, और उन्होंने आपको बतलाया था कि जब खबरें मुफरद मुतजमिन हो ऐसे माना को जिसके लिए सदारत कलाम वाजिब हो तो उस वक्त खबर को मुकदम करना वाजिब है। जैसे अईना जैदुन, ये अईना क्या है, ये खबर है और यह मुतजमिन है इस्तेफाम के माना को, लिहाजा इसको मुकदम करना वाजिब है, भाई वाजिब है। या दूसरी सूरत यह है कि खबर जो है खबर को मुकदम किया जाएगा तो फिर वो मुब्तदा के मुब्तदा वाके होने को सही कर देगी, जैसे फिदारी रजुलन, तो इसके अंदर यह रजुलन नकेरा है, इसका मुब्तदा बनना सही नहीं जब तक इसके अंदर तख्सीस ना आ जाए, तो इसके अंदर तख्सीस जो है वो तकदीम खबर की वजह से आई, लिहाजा यहां खबर को मुकदम करना वाजिब है, फिर ही इस मुब्तदा का मुब्तदा बनना सही होगा। या तीसरी सूरत यह है कि वो जो मुब्तदा है उसके अंदर खबर के मुतालिक की कोई जमीर हो और खबर का वो मुतालिक ऐसा है कि उसको खबर पर मुकदम करना मुमकिन नहीं, तो मुब्तदा के अंदर खबर के मुतालिक की जमीर है तो इस सूरत में फिर पूरी खबर को मुकदम करना वाजिब है, वरना तो इस्मार कबल जिक्र लाजिम आएगा लफ्जन और रुतबतन। जैसे अलत तमरति मिसलुहा जुबदन, अलत तमरा यह है खबर और मिसलुहा यह है मुबतदा, इसके अंदर देखो हा जमीर तमरा को राजे है तो लिहाजा अब खबर को मुकदम करना वाजिब है भाई। और चौथी सूरत यह कि वो जो खबर है वो अन्ना से खबर वाके हो, जैसे इंदी अन्ना का कायमुन, तो यहां इंदी खबर मुकदम है और अन्ना का कायमुन, ये अन्ना क्या करता है पूरे जुमले को मुफरत यानी मस्दर की तावील में कर देता है, तो ये जो अन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है यही अन्ना मस्दरिया भी है, ये पूरे जुमला इस्मिया को मस्दर बना देता है। याद रखो हरूफ मस्दर तीन हैं, अन मा और अन्ना, अन और मा ये फेल पर दाखिल होते हैं और उस फेल को यानी जुमला फेलिया को मस्दर के माना में कर देते हैं, जबकि अन्ना जो है ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल है और आपने पढ़ा है कि जो हरूफ मुशब्बा बिल फेल हैं ये मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं, तो यूं कहो ये अन्ना जो है जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और ये उस जुमला इस्मिया को मस्दर बना देता है। तो अन और मा जुमला फेलिया को मस्दर बनाते हैं और अन्ना जुमला इस्मिया को मस्दर बना देता है। तो इंदी अन्ना का कायमुन, तो ये इंदी खबर मुकदम है किस से, अन्ना का कायमुन से, और अन्ना का कायमुन ये किस माना में है, कियामुका ऐ इंदी कियामुका, तो लिहाजा अब इस इंदी को मुकदम करना वाजिब है क्योंकि ये अन्ना से खबर है, अगर इस इंदी को मुअख्खर कर दिया जाएगा तो अन्ना का इल्तिबास लाजिम आएगा इन्ना के साथ, क्योंकि अन्ना का कायमुन ये कलाम के शुरू में आ जाएगा और कलाम के शुरू में तो इन्ना आता है तो सुनने वाला पढ़ने वाला समझेगा कि शायद ये इन्ना है भाई। तो इन तमाम सूरतों में खबर को मुकदम करना वाजिब है। अब आइए आज के सबक पर, कहते हैं वक़द यतअद्ददुल खबरु मिन गैरि तअद्ददिल मुखबरि अन्हु फयकूनु उस्नैनि फसाइदा। आगे साहिब काफिया फरमा रहे हैं कि कभी कभार खबर में भी तअद्दद आता है, यानी एक ही मुब्तदा की कई खबरें आती हैं, एक मुब्तदा की कई खबरें आती हैं, मसलन आप कहते हैं जैदुन आलिमुन शाइरुन कातिबुन, तो जैदुन मुब्तदा एक ही है और आगे कई खबरें आ गईं, जैदुन आलिमुन कातिबुन शाइरुन, तो देखो तीन खबरें आगे आ गईं। तो कहते हैं वक़द यतअद्ददुल खबरु मिन गैरि तअद्ददिल मुखबरि अन्हु, और कभी कभार खबरों में तअद्दद होता है यानी खबरें मुतअद्दद होती हैं, मिन गैरि तअद्ददिल मुखबरि अन्हु, मुखबर अन्हु के तअद्दद के बगैर, मुखबर अन्हु जिसके बारे में खबर दी जा रही है यानी मुब्तदा, मुब्तदा मुब्तदा में तअद्दद के बगैर ही खबर में तअद्दद आता है। भाई याद रखो मुब्तदा में तअद्दद होगा तो फिर तो खबर में भी तअद्दद आएगा, भाई मुब्तदा में तअद्दद होगा तो खबर के अंदर भी तअद्दद आएगा। मसलन हुमा आलिमु व जाहिलुन, हुमा वो दोनों आलिमु व जाहिलुन, आलिम और जाहिल हैं, तो देखो मुब्तदा में तअद्दद है, मुखबर अन्हु में तअद्दद है, हुमा दो, दो की बात की जा रही है, एक की बात नहीं की जा रही, और दोनों में से हर एक की अलग अलग बात की जा रही है। आलिमू व जाहिलुन, आलिम और जाहिल होने का हुक्म हर एक पर नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि एक ही शख्स आलिम भी हो और जाहिल भी हो यह नहीं हो सकता, या वो आलिम होगा या जाहिल होगा। तो ये जो आलिम और जाहिल होने का हुक्म है, यानी जो खबर में तअद्दुद आ रहा है, ये किसके एतबार से है कि मुखबर अनहु में तअद्दुद है, वो भी दो अफराद हैं। तो एक के बारे में क्या बतलाया कि अहदुहुमा आलिमुन व अहदुहुमा जाहिलुन। तो देखा यहां मुखबर अनहु यानी जिसके बारे में खबर दी जा रही है उसके अंदर तअद्दुद है भाई, जब उसके अंदर तअद्दुद है तो खबर में भी तअद्दुद आया भाई। लेकिन यहां उस मुखबर अनहु की बात नहीं की जा रही कि जिसके अंदर तअद्दुद हो, क्योंकि मुखबर अनहु में तअद्दुद होगा तो खबर में भी क्या होगा, तअद्दुद होगा। बल्कि यहां उस मुखबर अनहु यानी उस मुब्तदा की बात की जा रही है जिसमें तअद्दुद ना हो, जो खुद तो एक है लेकिन उसकी खबरें कई आ रही हैं। आगे बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वक़द यतअद्ददुल खबरु मिन गैरि तअद्दुदिल मुखबरि अनहु, और कभी कभार खबर में तअद्दुद होता है मिन गैरि तअद्दुदिल मुखबरि अनहु, मुखबर अनहु में तअद्दुद के बगैर ही। फयकूनु उस्नैनि फसाइदन, तो वो खबर जो है दो होंगी, फसाइदन या दो से ज्यादा होंगी, दो या दो से ज्यादा खबरें होंगी भाई। तअद्दुद के लिए कम से कम दो तो जरूर चाहिए, तो दो भी हो सकती हैं, तीन चार पांच जितनी भी बनाना चाहे बना सकते हैं भाई। देखिए यहां पर आया मिन गैरी तअद्दुदिल मुखबरि अनहु, साहिबे जामी ने यह नहीं फरमाया मिन गैरी तअद्दुदिल मुबतदाई, मुबतदा में तअद्दुद के बगैर, बल्कि क्या फरमाया मिन गैरी तअद्दुदिल मुखबरि अनहु। मुबतदा कह लें या मुखबर अनहु कह लें, एक ही बात है। तो साहिब जामी ने यह मुखबर अनहु फिर क्यों जिक्र किया, मुब्तदा को क्यों नहीं जिक्र किया? तो वजह यह कि लफ्ज खबर की रियायत की कि खबर है तो जिसके बारे में खबर है वो क्या हुआ, मुखबर अनहु। तो इसलिए मुखबर अनहु का लफ्ज इस्तेमाल किया। और नीज तफन्नुन के लिए, किसके लिए तफन्नुन, मैंने आपको गुज़श्ता सबक में बतलाया था कि तफन्नुन किसे कहते हैं, एक ही बात को एक ही चीज को मुख्तलिफ इबारतों से अदा करना ताकि कलाम खुशगवार मालूम हो, कलाम में लज्जत महसूस हो। तो एक ही चीज को मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र करना यह तफन्नुन कहलाता है। दो जगह जिक्र आया एक चीज का, एक जगह मसलन मुब्तदा का दो जगह जिक्र आया, एक जगह लफ्ज़ मुब्तदा बोल दें दूसरी जगह मुखबर अनहु बोल दें, देखो कलाम में हलावत आ गई भाई, लज्जत आ गई, एक नया लफ्ज आ गया भाई। तो एक चीज को मुख्तलिफ इबारतों से अदा करना यह तफन्नुन कहलाता है। आगे देखिए कहते हैं वज़ालिका तअद्दुदु इम्मा बिहसबिल लफ्ज़ वल माना जमीहा। इधर देखिए आगे आपको बतलाएंगे कि ये जो तअद्दुद है खबर के अंदर कभी लफ्ज और माना दोनों एतबार से होगा, कभी सिर्फ लफ्जों के एतबार से तअद्दुद होगा, माना के एतबार से तअद्दुद नहीं। मसलन मैं आपसे कहता हूं ज़ैदुन ताजिरुन शायरुन, तो देखो ताजिर का माना और शायर का माना और, लफ्ज भी दो हैं, ताजिर का लफ्ज अलग शायर का लफ्ज अलग, और माना भी दोनों का अलग अलग है। तो देखो यहां खबर में तअद्दुद है लफ्जन भी और मानन भी, लफ्जों के एतबार से भी तअद्दुद और माना के एतबार से भी तअद्दुद। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लफ्जों के एतबार से तो तअद्दुद होता है लेकिन माना के एतबार से तअद्दुद नहीं होता। मसलन मैं आपसे कहता हूं हाजा हुलवुन हामिज़ुन, ये किताब में मिसाल आएगी आगे भाई, हाजा हुलवुन हामिज़ुन, हामिज ज़ाद के साथ है भाई, हुलवुन का माना मीठा, हामिज का माना खट्टा, तो हाजा हुलवुन हामिज़ुन ये मीठा है खट्टा है भाई। आप जानते हैं कि एक खास जायका, एक चीज जो मीठी भी है और खट्टी भी है, दोनों जायके बयक वक्त उसके अंदर मौजूद हैं, उसको उर्दू में खट मीठा कहते हैं। क्या कहते हैं? खट मीठा या खट्टा मीठा भाई। अब ये एक ही जायका है, अलग अलग नहीं है भाई, ये एक ही जायका है। और अरबी में इसको कहते हैं मुज़्ज़ुन, क्या कहते हैं? मुज़्ज़ुन, जो खट मीठा है उसको मुज़्ज़ुन कहते हैं। या तो मुज़्ज़ुन कह लें मसल के हाजा मुज़्ज़ुन, ये खट मीठा है, या यूं कहें हाजा हुलवुन हामिज़ुन, ये खट मीठा है भाई, या यूं कहें ये खट्टा मीठा है भाई। तो अब इसमें देखो हाजा है मुब्तदा, हुलवुन हामिज़ुन ये खबर है भाई, और इसमें देखो लफ्जों में तअद्दुद है लेकिन माना के एतबार से तअद्दुद नहीं, क्योंकि ये एक ही जायके का नाम है। तो खबर में तादुद आता है। कभी यह तादुद लफ्ज और माना दोनों एतबार से होता है, जैसे जैदुन शायरुन व कातिबुन, लफ्जों के एतबार से भी तादुद और माना के एतबार से भी तादुद, और बाज औकात लफ्जों के एतबार से तो तादुद होता है और माना के एतबार से तादुद नहीं होता। अब फिर इसमें याद रखो, अगर लफ्ज और माना दोनों एतबार से तादुद हो तो फिर आतफ के साथ भी इसको लाना सही, बगैर हर्फ आतफ के भी लाना सही। जैसे जैदुन शायरुन व कातिबुन, देखो हर्फ आतफ में दरमियान में ले आया, और आप चाहें तो हर्फ आतफ दरमियान में न लाएं, जैदुन शायरुन कातिबुन। तवज्जो है, यहां खबर में तादुद है किस एतबार से, लफ्ज के एतबार से भी और माना के एतबार से भी, तो यहां हर्फ आतफ लाना भी सही और उसके बगैर भी सही है, दोनों तरह आप ये खबर ला सकते हैं। और अगर खबर में तादुद सिर्फ लफ्जों के एतबार से है, माना के एतबार से तादुद नहीं है, तो उस सूरत में आतफ को तर्क कर देना औला है। इस सूरत में फिर जमहूर के नजदीक दरमियान में हर्फ आतफ लाना पसंदीदा नहीं। तो कैसे कहेंगे, हाजा हुलवन हामिजुन कहेंगे, हाजा हुलवुन व हामिजुन कहना पसंदीदा नहीं है। तो कहते हैं वज़ालिका तअद्दुदु इम्मा बिहसबिल लफ्ज़ वल माना जमीआ, और वो जो तअद्दुद है खबर के अंदर, या तो वह लफ्ज और माना दोनों एतबार से होगा, व युस्तअमलु ज़ालिका अला वजहैनि, और ये दो तरह पर इस्तेमाल होता है, बिल अत्फ़ अतफ के साथ होगा, मिस्लु ज़ैदुन आलिमु व आक़िलुन, व बिगैर अत्फ और बगैर अतफ के भी इस्तेमाल होगा, मिस्लु ज़ैदुन आलिमुन आक़िलुन, देखो दरमियान में कोई हर्फ अतफ नहीं है। वह इम्मा बिहसबिल लफ्ज़ फकत, या वो जो तअद्दुद है खबर के अंदर वो सिर्फ लफ्ज के एतबार से है, नहु हादा हुलवुन हामिज़ुन, ये खट्टा मीठा है, फइन्नहुमा फिल हकीकति खबरुन वाहिदुन, इसलिए क्योंकि ये दोनों हकीकत के एतबार से एक ही खबर है, ऐ मुज़्ज़ुन, ये मुज़्ज़ुन ये खट्टा मीठा, भाई ये उस जायके का नाम है। वफी हादिही सूरति तर्कुल अत्फ औला, और इस सूरत में अतफ को तर्क कर देना औला बेहतर है, यानी जब लफ्जों में तादुद है लेकिन माना में तादुद नहीं, तो वहां हर्फ अतफ को छोड़ देना औला है। व नजरा बाजुन नुहाति इला सूरति तादुदी व जव वजल अतफा, और बाज नहवियों ने सूरत तादुद की तरफ देखा, किसकी तरफ, सूरत तादुद की तरफ देखा, जैसे हाजा हुलवुन हामिजुन, कहते हैं भाई सूरत के एतबार से तादुद है या नहीं, लफ्ज दो आ रहे हैं हुलवुन और हामिजुन, माना बेशक एक है लेकिन लफ्ज तो दो हैं, सूरत तो तादुद वाली है, लिहाजा हर्फ आतफ लाना भी जायज है। वो कहते हैं हाजा हुलवुन व हामिजुन कहना भी जायज है भाई। तो कहते हैं व नजरा बाजुन नुहाति इला सूरति तअद्दुदी, और बाज नहवियों ने सूरत तअद्दुद की तरफ नजर की, वजव वजल अतफा, और आतफ को जायज करार दिया। वला यबउदु अन युकाल मुरादुल मुसन्निफ बितअद्दुदिल खबर मा यकूनु बिगैर आतिफिन, भाई यहां तक जो तकरीर की वो आम शारहीन की तकरीर की साहिब जामी ने, मतन जरा देखो, कहते हैं वकद यतअद्ददुल खबरु मिस्लु ज़ैदुन आलिमुन आकिलुन, और कभी कभार खबर में तादुद आता है जैसे ज़ैदुन आलिमुन आकिलुन। मतन में जो मिसाल आई है उसमें आलिमुन और आकिलुन दो खबरें हैं ज़ैद के लिए, और दोनों के दरमियान हर्फ आतफ नहीं है, हर्फ आतफ नहीं है, लेकिन आम शारहीन जब इस मकाम पर तकरीर करते हैं तो यही तकरीर करते हैं कि खबरों में तादुद आएगा, कभी लफ्जन और मानन दोनों के एतबार से होगा और कभी मानन होगा, और फिर इनके अंदर हर्फ आतफ लाना भी जायज और उसके बगैर लाना भी जायज है, यानी हर्फ आतफ के साथ खबरों के तादुद को भी वो यहां जिक्र करते हैं। तवज्जो है, खबर में तादुद आए किसके साथ, हर्फ आतफ के साथ, जैसे जैदुन आलिमुन व आकिलुन, हालांकि साहिब काफिया ने यह मिसाल जिक्र नहीं की, उन्होंने क्या कहा, जैदुन आलिमुन आकिलुन कहा, हर्फ आतफ को दरमियान में जिक्र नहीं किया, लेकिन तमाम शारहीन जिक्र फरमाते हैं कि हर्फ आतफ के साथ भी सही ये तादुद और बगैर हर्फ आतफ के भी ये तादुद सही है। साहिब जामी फरमाते हैं कि यह बात भी बईद नहीं है कि यूं कहा जाए कि यहां मुसन्निफ की मुराद वो खबर है जिसमें बगैर हर्फ आतफ के तादुद आए, हर्फ आतफ वाला तादुद यहां मुराद नहीं। और करीना क्या है, कहते हैं मुसन्निफ ने जो मिसाल जिक्र की, मुसन्निफ ने बगैर हर्फ अतफ के मिसाल जिक्र की, मालूम हुआ जो अतफ के साथ तअद्दुद आए वो यहां मुसन्निफ की मुराद नहीं है, इसीलिए उन्होंने बगैर अतफ वाली मिसाल जिक्र की। और क्या वजह है क्यों जिक्र की बगैर अतफ वाली मिसाल, कहते हैं इसलिए क्योंकि हर्फ अतफ के जरिए तअद्दुद में कोई खिफा नहीं। भाई हर्फ अतफ के जरिए तो तअद्दुद मुब्तदा में भी आता है, खबर में भी आता है, जैद व अमरू व बकरुन काइमूना, तो देखो मुब्तदा में तअद्दुद आया, जैद और अमर और बकर, और इसी तरह अतफ के जरिए खबर में भी तअद्दुद आता है, जैदुन आलिमुन व आकिलुन, तो हर्फ अतफ के जरिए तो मुब्तदा में भी तअद्दुद आता है और खबर में भी तअद्दुद आता है और इसके अंदर कोई खफा नहीं, कोई पोशीदगी नहीं, यह बात जाहिर है, सबको पता है भाई। हां हर्फ अतफ के बगैर मुब्तदा में तअद्दुद जायज नहीं, जैदुन अमरुन बकरुन काइमूना, यूं आप नहीं कह सकते कि मुब्तदा में तअद्दुद लाएं बगैर अतफ के, तो मुब्तदा में तो बगैर हर्फ अतफ के तअद्दुद जायज नहीं था, तो सवाल पैदा हुआ क्या खबर में भी बगैर हर्फ अतफ के तअद्दुद जायज है या जायज नहीं। तो साहिब काफिया ने आपको बतला दिया कि खबर के अंदर बगैर अतफ के भी तअद्दुद जायज है, और हर्फ अतफ उसको जिक्र नहीं किया क्योंकि उसमें कोई खफा नहीं, वो तो हर एक जानता है, हर्फ अतफ के साथ तो मुब्तदा में भी तअद्दुद हो सकता है और खबर में भी तअद्दुद हो सकता, तो खफा सिर्फ किसके अंदर था, बगैर हर्फ अतफ के, बगैर हर्फ अतफ के मुब्तदा में तो तअद्दुद नहीं हो सकता था, तो क्या खबर में भी हो सकता है या नहीं, इसमें खफा था, लिहाजा इसलिए साहिब काफिया ने बाकायदा इसकी मिसाल जिक्र कर दी। बात समझ में आ गई, तो मालूम हुआ यूं कहा जाए कि साहिब काफिया यहां पर उस खबर के तअद्दुद को बयान कर रहे हैं जिसमें हर्फ अतफ ना हो भाई, जिसमें हर्फ अतफ ना हो, जैसा कि उनकी इस मिसाल से वाजह होता है, और नीज इसलिए भी क्योंकि हर्फ अतफ के साथ जब तअद्दुद लाया जाएगा तो वो जो हर्फ अतफ के बाद आए उसको खबर नहीं कहते, उसको तो मातूफ कहते हैं, और वो तो तवाबे में से है भाई, मसलन जैदुन आलिमुन व आकिलुन, ये आलिमुन तो खबर है और ये व आकिलुन जो है ये तो खबर नहीं, ये तो मातूफ कहलाता है, ये तो ताबे है और ताबे पर वही एराब आता है जो मतबू पर होता है, ये मातूफ है और मातूफ पर मातूफुन आलिया वाला एराब ही आता है। तो कहते हैं वलाया बउदू अयु काला, और ये बात भी बाईद नहीं है कि यूं कहा जाए कि मुरादुल मुसन्निफी भी तअद्दुद खबरी मायकून बगैर आतिफिन, के मुसन्निफ की मुराद जो है तअद्दुद खबर से वो खबर है जो बगैर हर्फ आतफ के हो, लअन्न तअद्दुद बिल आतिफी ला खफा बिही, इसलिए क्योंकि वो तअद्दुद जो आतिफ यानी हर्फ आतफ की वजह से आए ला खफा बिही, उसमें तो कोई खफा नहीं, ला फिल खबरी वला फिल मुब्तदाई, ना तो खबर में और ना ही मुब्तदा में, यानी खबर में भी उसमें आतफ के जरिए तअद्दुद आता है, मुब्तदा में भी आता है, वला फी गैरिहिमा, और इनके अलावा के अंदर भी कोई खफा नहीं है भाई। आप फाइल पर भी आतफ करते हैं, जानी जैदुन व अमरुन व बकरुन व खालिदुन, तो आतफ के जरिए तो तअद्दुद फाइल में भी आ जाता है, आतफ के जरिए तो तअद्दुद मफूल बिही में भी आ जाता है, जरबतु जैदन व बकरन व खालिदन, तो आतफ के जरिए तअद्दुद में चूंकि कोई खफा नहीं था लिहाजा उसको जिक्र नहीं किया। तो कहते हैं लिअन्न तअद्दुद बिल आतिफी ला खफा बिही, इसलिए क्योंकि हर्फ अतफ के जरिए तअद्दुद में कोई खफा नहीं है, ला फिल खबरी ना तो खबर में, वला फिल मुब्तदाई और ना मुब्तदा में, वला फी गैरिहिमा और ना इन दोनों के अलावा में, व अयज़ानिल मुतअद्दिद बिल आतफी लैसा बिखबरिन बल हुआ मिन तवाबिही, और नीज वो जो मुतअद्दिद बिल आतफ है जिसमें तअद्दुद आया आतफ की वजह से, लैसा बिखबरिन वो तो हकीकत में खबर नहीं है, बल हुआ मिन तवाबिही बल्कि वो तो खबर के तवाबे में से है, व लिहाजा औरादा और इसी वजह से मुसन्निफ लेकर आए फिल मिसाली मिसाल के अंदर, अलखबर अल मुतअद्दिद बगैर आतिफिन वो खबर जिसके अंदर तअद्दुद है बगैर आतिफ के। तो कहते हैं यह बात भी बाईद नहीं है कि यूं कहें कि यहां जो तअद्दुद साहिब काफिया बयान कर रहे हैं वो कौन सा तअद्दुद है जो बगैर आतिफ के हो भाई, बगैर आतिफ के, और अगर यह तस्लीम कर लिया जाए कि नहीं वो दोनों को बयान करना चाहते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर वो बगैर आतिफ की मिसाल तो लाए हैं, आतिफ वाली मिसाल क्यों नहीं लाए, आतिफ अली मिसाल क्यों नहीं लाए, तो उसका फिर यह जवाब दिया जा सकता है कि मुसन्निफ की मुराद तो दोनों हैं लेकिन आतिफ के साथ खबर के तादुद में कोई खफा नहीं था लिहाजा उसकी मिसाल नहीं दी, और बगैर आतिफ के खबर के तादुद में खफा था लिहाजा इसलिए उसकी मिसाल बाकायदा जिक्र कर दी। कहते हैं वलौ जुइला तअद्दुदु अम्मा, और अगर तअद्दुद को आम करार दिया जाए कि चाहे अतफ के साथ हो चाहे बगैर अतफ के, दोनों यहां जिक्र कर रहे हैं, तो फल इख्तिसारु अलैहि लिज़ालिका, तो इस मिसाल पर जो इक्तिफा किया वो इस वजह से किया, यानी तर्क आतिफ अली मिसाल पर इक्तिफा किया इस वजह से क्योंकि इसके अंदर खफा था, बाकियों में खफा नहीं है। وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط وهو سببيه الاول للثاني او للحكم به فلا يرد عليه نحو وما بكم من نعمه فمن الله فيشبه المبتدا الشرط في سببيته للخبر كسببيه الشرط للجزاء। भाई आगे साहिब काफिया आपको बतलाएंगे कि कभी कभार मुब्तदा भी शर्त के माना को मुतजमिन होता है, मुब्तदा के अंदर भी शर्त वाला माना आ जाता है, लिहाजा ऐसे मुब्तदा की खबर पर फा का लाना जायज है, क्योंकि आप जानते हैं भाई शर्त की जजा पर उमूमन क्या दाखिल की जाती है, फा, फा दाखिल की जाती है, इन अकरमतनी फजजाकल्लाहु खैरा, देखो जजा पर क्या दाखिल की गई, फा, तो जैसे शर्त की जजा पर फा दाखिल की जाती है इसी तरह कभी कभार मुब्तदा जो है वो मुतजमिन होता है माना शर्त को, यानी शर्त के माना पर वो मुश्तमिल होता है, उसके अंदर शर्त वाला माना होता है, तो उस मुब्तदा की खबर पर फा का लाना जायज है, फा का लाना जायज है, यानी आप लाना चाहें तो ले आए और नहीं लाना चाहते तो ना लाए। भाई भाई देखिए पहले मतन मतन, तो कहते हैं वक़द यतज़म्मनुल मुब्तदा उमाना शर्ती, और कभी कभार मुब्तदा जो है शर्त के माना को मुतज़म्मिन होता है, फयसिहु दुखूलुल फाई फिल खबरी, तो सही है फा का, जी तर्जमा कीजिए, फयसिहु दुखूलुल फाई फिल खबरी, तो सही है फा का दाखिल होना, भाई फा का दाखिल करना नहीं बल्कि दुखूलुल फाई, फा का दाखिल होना, फयसिहु दुखूलुल फाई फिल खबरी, तो सही है फा का दाखिल होना फिल खबरी उस खबर में, वज़ालिकल इस्मुल मौसूलु बिफ़िलिन औ ज़र्फिन अविन नकिरतुल मौसूफतु बिहिमा। भाई वो कौन सा मुब्तदा है वो बतला रहे हैं, कहते हैं वज़ालिकल इस्मुल मौसूलु, और वो मुब्तदा है जो इसमें मौसूल हो बिफ़िलिन औ ज़र्फिन, फेल या ज़र्फ के साथ। भाई आप जानते हैं कि इसमें मौसूल जो है उसके लिए हमेशा सिला चाहिए, मौसूल के अंदर बे इंतहा इबहाम होता है, इतना ज्यादा इबहाम होता है कि जब तक आगे एक पूरा जुमला नहीं आएगा उसका इबहाम दूर नहीं होगा। बात समझ में आ गई, मौसूल के अंदर बे इंतहा इबहाम है, इतना इबहाम के मुफरद के जरिए वो इबहाम दूर नहीं हो सकता बल्कि उसके लिए जुमला लाना पड़ेगा। तो कलाम के अंदर जब भी इसमें मौसूल आए उसके फौरन बाद आगे एक जुमला आएगा जो उसका सिला कहलाएगा भाई, और मौसूल के साथ सिला मिलेगा तो फिर इसमें मौसूल का माना आपको समझ में आएगा, उसके बगैर इसमें मौसूल का माना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मसलन मैं आपसे कहता हूं अल्लजी, बल्कि पहले दूसरी मिसाल लें, मैंने कहा जैद, फौरन आपके जहन में जैद का तसव्वुर आ गया क्योंकि जैद मारिफा है, आपके एक साथी का नाम जैद है, तो जैसे ही मैंने जैद कहा फौरन आपके जहन में जैद की सूरत आ गई, आप समझ गए कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरह इसमें मौसूल वो भी मारिफा है, और मारिफा किसे कहते हैं जो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करे। अब मैंने कहा अल्लजी, अल्लजी का माना है वो जो के, तो अल्लजी वो जो के, कोई जात आपके जहन में आई नहीं भाई क्योंकि इसके अंदर इबहाम है, वो जो के भाई, वो जो के कौन भाई, कौन मुराद है कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसके अंदर इबहाम है, आगे अब एक जुमला चाहिए पूरा जो इसके इबहाम को दूर करेगा और वो इसका सिला कहलाता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं अल्लदी अकरमा का, वो शख्स जिसने आपका इकराम किया था, अब आप समझ गए कि अच्छा उस आदमी की बात हो रही है, तो ये अकरमा का ये सिला है और इस सिले ने आकर मौसूल से इबहाम को दूर कर दिया। तो इसमें मौसूल को आप जुमले के अंदर चाहे मुब्तदा बनाना चाहें, चाहे खबर, चाहे फाइल, चाहे मफूल, चाहे सिफत, चाहे मौसूफ, जो भी बनाना चाहते हैं, पहले सिले को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। बगैर सिले के इसमें मौसूल न मुब्तदा बन सकता है, न खबर, न फाइल, न मफूल, कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसका माना ही नहीं समझ में आएगा। तो इसमें मौसूल जब भी आए आपने फौरन इसके सिले को इसके साथ जोड़ना है, और सिला हमेशा क्या होगा, जुमला होगा। और जुमले को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो दरमियान में रबत जरूरी है, तो उस सिले के अंदर भी एक जमीर गायब की चाहिए जो किसकी तरफ लौटे, उस इसमें मौसूल की तरफ लौटे भाई। और फिर याद रखना ये जो इसमें मौसूल है इसके लिए तो कोई महल एराब होगा। इसमें मौसूल अगर मुब्तदा है तो वह महलन मरफू होगा, अगर वो खबर है तो खबर भी मरफू होती है तो इसमें मौसूल भी मरफू होगा, और अगर इसमें मौसूल मफूल बन रहा है तो वो मंसूब होगा। तो इसमें मौसूल के लिए कोई ना कोई एराब आएगा, कोई महल एराब होगा उसके लिए, लेकिन ये जो सिला है आगे इसके लिए कोई महल एराब नहीं। ला महल लहू मिन अल एराब, उसके लिए कोई महल एराब नहीं। आप कहेंगे भाई मौसूल पर जो एराब है वही एराब सिले का भी होना चाहिए। नहीं भाई, ये कोई आपस में मौसूफ सिफत नहीं है। मौसूफ सिफत का एराब एक होता है, सिफत पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर आता है, लेकिन यहां मौसूल का सिला है ये उसकी सिफत नहीं है कि इस पर भी वही एराब आ जाए। तो सिला जो है उसके लिए ला महल लहू मिन अल एराब कहेंगे भाई। तो वो मुब्तदा जो मुतज़म्मिन हो शर्त के माना को कहते हैं वज़ालिकल इस्मुल मौसूल बिफ़िअलिन औ ज़र्फिन, वो इसमें मौसूल है जो फेल या ज़र्फ के साथ आए। किसके साथ आए? फेल। यानी ऐसा इसमें मौसूल जिसका सिला फेल आए, और फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर क्या बनता है? जुमला। मालूम हुआ वो इसमें मौसूल जिसका सिला जुमला फ़िअलिया हो। और इसी तरह बिफ़िअलिन औ ज़र्फिन, वो इसमें मौसूल जो ज़र्फ के साथ आए। ज़र्फ आप जानते हैं एक ज़र्फ़ हकीकी है जिसमें जमाने और जगह वाला माना हो, और वो मफूल फी बनता है, और उसके लिए भी सबता या साबितुन निकालते हैं अगर कलाम के अंदर ना हो, क्योंकि मफूल फी है और मफूल फी मंसूब होता है, तो इसके लिए आमिल चाहिए, किसने इसको नसब दिया, ये किसके लिए मफूल फी है। और इसी तरह एक जार मजरूर है, और जार मजरूर को मजाजन ज़र्फ कहते हैं, और जार मजरूर के लिए मुतअल्लक चाहिए भाई। तो जार मजरूर के लिए मुतअल्लक चाहिए, तो ये जिससे जुड़ते हैं वो इनका मुतअल्लक कहलाता है। वो अगरचे इनके अंदर आमिल है, इसमें आमिल है, लेकिन उसके लिए मुतअल्लक का लफ्ज़ बोलते हैं। वजह यह कि मैंने बताया था कि जब कोई फेल किसी लफ्ज़ में बराह रास्त अमल न कर सके तो किसका सहारा लिया जाता है? हर्फ जर का। हर्फ जर का सहारा लिया जाता है, तो यह फेल अब उस मजरूर में अमल कर रहा है, लेकिन बराह रास्त नहीं, बल्कि किसके वास्ते से? हर्फ जर के वास्ते से उसमें अमल कर रहा है। तो हर्फ जर के साथ ये जो मजरूर है ये मुतअल्लिक कहलाएंगे, क्योंकि दरमियान में हर्फ आ रहा है, फेल उसके अंदर बराह रास्त अमल नहीं कर रहा, तो इसलिए यहां मुतअल्लिक का लफ्ज बोलते हैं भाई। तो वो इसमें मौसूल जो जर्फ के साथ हो, यानी जिसका सिला जर्फ आए, चाहे जर्फ हकीकी हो चाहे जर्फ मजाजी हो। अल्लज़ी फिद्दार, तरकीब कैसे होगी? अल्लज़ी इसमें मौसूल फी जारा अदारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किससे? ये जर्फ आ गया मौसूल का सिला, किससे मुतालिक? बाकी जगह पर सबता और साबितुन दोनों निकाल सकते हैं भाई। पीछे खबर की बात आई थी कि वो खबर जो जर्फ हो, तो साहिब काफिया ने क्या फरमाया था? उसकी तावील जुमला के साथ की जाएगी, यानी वहां फेल मुकद्दर निकालेंगे। तवज्जो है? तो ये बसरा वालों का मजहब है, जबकि कूफा वाले इख्तिलाफ करते हैं। वो फरमाते हैं सिफत का सीगा यानी इसमें फाइल या इसमें मफूल यहां मुकद्दर निकालेंगे, क्योंकि खबर के अंदर असल यह है कि वह मुफरद होनी चाहिए। जब खबर जर्फ वाके हो उसके अंदर तो उलमा का इख्तिलाफ है। बास क्या फरमाते हैं कि इसकी तावील जुमला के साथ की जाएगी, बास कहते हैं इसकी तावील मुफरद के साथ की जाएगी, लेकिन वो जर्फ जो सिला बने उसमें बिल इत्तेफाक उसकी तावील जुमला के साथ की जाएगी, यानी वहां फेल निकालेंगे। क्यों फेल निकालेंगे? क्योंकि फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बनेगा, और अगर आप सिफत का सीगा निकालेंगे तो फिर तो वो मुफरद बनेगा भाई। और हालांकि मौसूद का सिला मुफरद नहीं होता बल्कि वो जुमला होता है, और जुमला किस सूरत में है कि उस जर्फ की तावील किसके साथ की जाए? फेल के साथ। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वो मुब्तदा जो मुतजमीन हो शर्त के माना को, अल इस्मुल मौसूल बि फ़िअलिन औ ज़र्फिन, वो इसमें मौसूल है जो फेल या ज़र्फ के साथ हो। अभी नकिरतुल मौसूफतु बिही मा, या वो नकिरा जो इन दोनों के साथ मौसूफ हो, यानी इन दोनों में से एक के साथ मौसूफ हो। भाई मैंने आपको बतलाया था नकिरा के बाद फेल आ जाए तो वो अमूमन उसके लिए क्या बनता है, सिफत। इसी तरह मैंने आपको बतलाया था कि नकिरा के बाद जार मजरूर आ जाए और वो किसी से न जुड़ रहा हो तो वो भी अमूमन उस नकिरा के लिए सिफत बनेगा। लिहाजा वो नकिरा जो फेल के साथ मौसूफ हो रहा है या वो नकिरा जो जर्फ के साथ मौसूफ हो रहा है और मुबतदा है तो इसके अंदर भी शर्त वाला माना आ गया, लिहाजा इसकी खबर पर भी फाका दाखिल करना जायज है। ये कुछ मिसालें अपने सामने लिखें ताकि उनको हम हल कर लें और बात खूब वाजे हो जाए। भाई लिखिए भाई, अल्लजी यातीनी, अल्लजी यातीनी फलहू दिरहमुन, अल्लदी यातीनी फलहु दिरहमुन। जी तरकीब कीजिए, माना समझ में आ रहा है
जी?
क्या माना? अल्लदी यातीनी वो शख्स जो मेरे पास आएगा, फलहु दिरहमुन तो उसके लिए एक दिरहम है, यानी मैं उसे एक दिरहम दूंगा। अब देखिए अल्लदी यातीनी, तरकीब शुरू कीजिए भाई। अल्लज़ी मरफू महल्लन, इसमें मौसूल याती फेल बा फाइल, मैंने बताया था फेल के साथ जब फाइल की जमीर हो जुड़ी हुई तो फिर उसको कैसे ताबीर करेंगे, फेल बा फाइल। तो याती फेल बा फाइल, अब इसके अंदर फाइल भी बता दें क्या है, याती के अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, आगे नोन विकाया या जमीर मंसूब महल्लन मफूल बिही, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला मौसूल के लिए। नहीं भाई, ये जुमला सिला नहीं बन सकता, आपने रबत कोई नहीं बताया। जी रबत दीजिए, हां यातीनी के अंदर जो हुआ जमीर थी वो अल्लजी को राजे, और फिर ये भी गौर कर लिया करो कि जमीर और मर्जे में मुताबकत है या नहीं, हुआ जमीर भी मुफरद मुजक्कर और अल्लजी भी मुफरद मुजक्कर है तो जमीर और मर्जे में भी मुताबकत है। तो फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला मौसूल सिला मिलकर मुबतदा, और ये मुबतदा देखो वो इसमें मौसूल है जिसका सिला फेल आ रहा है और ये मुतजमिन होता है माने शर्त को, लिहाजा इसीलिए इसकी खबर पर फाका लाना जायज है। तो ये फा जो दाखिल हो रही है ये जजा नहीं है, आपको जहां ऐसा कलाम मिल जाए और फा को देखते ही आप आंखें बंद करके कह दें ये जजा है, नहीं भाई, आज आपको पता चल गया कि ये फा कभी खबर पर भी दाखिल करते हैं, ये जजा नहीं है, ये खबर है। ये क्या है? खबर है, क्योंकि मुब्तदा मुतजमिन था माने शर्त को। और फलहू दिरहमुन, तो ये लहू दिरहमुन खबर है और ये पूरा जुमला है। आपने पढ़ा है कभी कभार खबर जो है जुमला होती है, तो यहां पर भी ये खबर जो है जुमला है भाई। लहू जो है ये जार मजरूर है और जार मजरूर मैंने आपको बतलाया था वो कभी भी मुस्नद इलैह नहीं बनता, मुस्नद तो बन सकता है, मुस्नद इलैह नहीं बन सकता। तो लिहाजा फलहू, ये लहू क्या है? खबर है मुकदम, और दिरहमुन मुब्तदा मुअखर है। यहां फिर इश्काल होता है कि दिरहमुन तो नकेरा महज है और नकेरा महज तो मुब्तदा नहीं बनता, फिर ये कैसे मुब्तदा बन गया? क्या जवाब देंगे आप? फलहू दिरहमुन, ये दिरहमुन तो नकेरा है, ये मुब्तदा कैसे बन सकता है? जवाब ये कि यहां जो मुब्तदा मुअखर है इसके अंदर तख्सीस आ गई तकदीम खबर की वजह से। लहू क्या है? खबर मुकदम है और दिरहमुन मुब्तदा मुअखर, तो तकदीम खबर की वजह से वो मुब्तदा जो नकेरा है उसके अंदर तख्सीस आ गई, लिहाजा उसका मुब्तदा बनना सही है। जी तरकीब कीजिए, फलहू दिरहमुन, जी फा जजाइया, लहू लाम जारा हा जमीर मजरूर महल्लन, मजरूर महल्लन जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किससे? सबता भी निकाल सकते हैं, साबितुन भी निकाल सकते हैं भाई, ये मुतालिक किससे? सबता फेल से, सबता फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर मुकदम किसके लिए, दिरहम के लिए। नहीं भाई, ये खबर नहीं बन सकती जब तक रबत नहीं देंगे, ये खबर नहीं बनेगी। जुमला को आप खबर बना रहे हैं, रबत दीजिए। जी, लहू के अंदर जो हा जमीर है ये किसको राजे, दिरहम को। तर्जमा जरा करो, फलहू दिरहमुन आई लि दिरहमिन दिरहमुन, दिरहम के लिए दिरहम है। देखा, माना सही नहीं हो रहा। मालूम हुआ लहू की हा जमीर दिरहम को नहीं लौटा सकते, वरना तो क्या माना बन जाएगा, लि दिरहमिन दिरहमुन, दिरहम के लिए दिरहम है भाई। और कोई जमीर है यहां पर? हां, सबता के अंदर हुआ जमीर थी, सबता लहू, उसके लिए साबित होगा। क्या साबित होगा? दिरहम भाई, ये तो सबता के अंदर हुआ जमीर है, और वो लौटा दें दिरहम की तरफ, और इससे रबत आ गया खबर का मुब्तदा मुअख्खर के साथ। तो ये खबर हुई, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, हां लहू ये खबर मुकदम हुई, और दिरहम उन मुब्तदा मुअख्खर, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये खबर, जुमला इस्मिया होकर यह खबर किसके लिए, अल्लजी यातीनी, वो जो मुब्तदा था उसके लिए खबर बन गई। और यह मुब्तदा की खबर पूरा जुमला है, और जुमले को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो दरमियान में क्या जरूरी, रबत जरूरी। आपने अल्लजी के साथ रबत ही नहीं दिया भाई, रबत दें भाई। हां, फलहू की हाजमीर जो है यह अल्लजी को राजे है। अल्लज़ी यातीनी, वो जो मेरे पास आएगा, लहू उसके लिए है दिरहमुन, क्या चीज, दिरहम भाई। तो ये लहू की हाजमीर जो है ये अल्लज़ी को राजे, इसने रबत दे दिया। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरकीब समझ में आ गई। एक और जुमला कीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, लिखिए भाई। अल्लज़ी फिदार, अल्लज़ी फिदार, फलहू दिरहमुन, फलहू दिरहमुन। तरकीब कीजिए भाई। अल्लजी मरफू महल्लन, इसमें मौसूल, ये मुब्तदा है इसलिए मरफू है। आगे फी जारा, अद्दारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किससे, साबता से। साबितुन निकाल सकते हैं यहां? नहीं, क्योंकि हमें जुमला चाहिए। साबितुन निकाल सकते हैं, साबितुन याद रखो निकाल सकते हैं, लेकिन इस सूरत में फिर उसके लिए एक मुब्तदा भी निकालना पड़ेगा, पूरा जुमला चाहिए। तो हुआ मुब्तदा अलग निकालेंगे, और साबितुन फिदार अलग निकालेंगे, और यह पसंदीदा नहीं, क्योंकि हजफ कम से कम होना चाहिए। तो लिहाजा यहां पर सबता ही निकालेंगे। जी, तो सबता, सबता फेल, हुआ जमीर इसके अंदर मरफू महल्लन, इसका फाइल जो लौट रही है अल्लजी की तरफ भाई। तो सबता फेल, अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर यह सिला मौसूल के लिए, मौसूल सिला मिलकर मुबतदा, और फलहू दिरहमुन उसी तरह खबर है, बाकी सारी तरकीब उसी तरह होगी। एक और जुमला लिखिए भाई। अल्लजी इंदा का फलहू दिरहमुन, अल्लजी इंदा का फलहू दिरहमुन। तरकीब कीजिए। अल्लजी मरफू महल्लन, इसमें मौसूल, इंदा एराब बोलिए, मंसूब लफजान, मंसूब लफजान मुजाफ, काफ जमीर मजरूर महल्लन मुजाफिले, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर यह मफूल फी हुआ, किसके लिए, सबता के लिए। सबता फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन, इसका फाइल जो किसको राजे, अल्लजी को, यह रबत आ गया। तो सबता फेल अपने फाइल और मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया होकर यह सिला मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा, और फलहू दिरहमुन उसकी खबर है, बाकी तरकीब उसी तरह होगी। तरीका समझ में आ गया। ये तीनों मिसालों में देखो, इनके अंदर ऐसा इसमें मौसूल मुबतदा बन रहा है जिसका सिला फेल है या जर्फ है, चाहे जर्फ हकीकी हो जैसे इंदा का, और चाहे जर्फ मजाजी हो जैसे फिदार। तो ये वाला जो मुबतदा है यह मुतजमिन होता है मायने शर्त को, लिहाजा इसकी खबर पर फाका लाना जायज। अगर आप चाहें तो फा ले आए, और आप चाहें तो फा को ना लाए भाई। और दूसरा, दूसरा वो मुब्तदा इन्होंने बताया अभी नकिरतुल मौसूफतु बिहिमा, वो नकिरा जो इन दोनों के साथ यानी इन दोनों में से एक के साथ मौसूफ हो रहा हो, यानी ऐसा नकिरा जिसकी सिफत फेल आ जाए या जर्फ आ जाए, जिसकी सिफत फेल आ जाए या जर्फ आ जाए, उसके लिए भी मिसाल लिखिए भाई। कुल्लु रजुलिन यातीनी, कुल्लु रजुलिन यातीनी फलहू दिरहमुन। जी तरकीब कीजिए, कुल्लु मरफू लफजान मुजाफ, याद रखो ये जो लफ्ज कुल है ये हमेशा मुजाफिले चाहता है। कुल का माना सारे, सब के सब, भाई सारे क्या चीज, भाई सारी किताबें या सारे कलम या सारे तलबा या सारे इंसान, आगे मुजाफिले चाहिए भाई, तो कुल हमेशा किसका तकाजा करता है, मुजाफिले का, तो इसके बाद हमेशा मुजाफिले आएगा। लेकिन कभी कभार इसके मुजाफिले को हजफ कर देते हैं और उसके इवज इस पर तनवीन ले आते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, कुल लोन। तो जब भी लफ्ज कुल और इसी तरह लफ्ज बाज, कुल और बाज, कुल का माना सारे, बाज का माना कुछ, तो दोनों मुजाफिले चाहते हैं और कभी इन पर तनवीन आपको इबारत में नजर आएगी। तो जब भी कुल और बास के लफ्ज पर तनवीन आ जाए समझ जाएं ये इवज है मुजाफुन इले के, मुजाफुन इले को हजफ कर दिया गया और उसके इवज कुल और बास पर तनवीन ले आए। तो लिहाजा अगर कुल पर तनवीन आ जाए तो आप समझ जाएं इसका कि ये तनवीन इवज है मुजाफुन इले से, और उमूमन वो वाहिद का लफ्ज होता है या मौके के मुताबिक जो भी हो। तो कुल्लुन आई कुल्लु वाहिदिन भाई, तो ये तनवीन किसके इवज है, वाहिद जो मुजाफुन इले है भाई। तो तरकीब कर रहे थे हम, कुल्लु रजुलिन यातीनी फलहु दिरहमुन, कुल्लु मरफू लफजान मुजाफ, रजुलिन मजरूर लफजान मुजाफुन इले है भाई, और इसके बाद यातीनी फेल आ रहा है और नकिरा के बाद फेल आए तो वह अमूमन उसके लिए क्या बनता है, सिफत। तो यहां रजुलिन मौसूफ है और उसके बाद यातीनी फेल उसकी सिफत बनेगा, तो कैसे कहेंगे, कुल्लो मरफू लफजन मुजाफ रजुलिन मजरूर लफजन मौसूफ भाई। यातीनी याती फेल बा फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल जो किसको राजे, रजुल को राजे है, सिफत को मौसूफ से जोड़ते हैं, और नून विकाया या जमीर मनसूब महलन मफूल बिही, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफत मौसूफ सिफत मिलकर यह मुजाफुन इले हुआ कुल के लिए, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुबतदा, तवज्जो है मुबतदा, और फलहू दिरहमुन यह उसकी खबर है। अब देखो कुल्लु रजुलिन यह ऐसा मुबतदा है जिसकी सिफत फेल आ रहा है, और वो मुबतदा जिसकी सिफत फेल आए तो वो मुतजमिन होता है माना शर्त को, लिहाजा उसकी खबर पर फा का लाना जायज है, चाहें तो ले आए चाहें तो ना लाएं भाई। यहां आपके जहन में इश्काल आएगा, कुल्लु रजुलिन यातीनी, ये यातीनी किसकी सिफत है, रजुल की, और रजुल तो मुबतदा नहीं है, मुबतदा तो कुल का लफ्ज है, वो मरफू है, कुल्लु रजुलिन ये रजुल तो मुजाफिले है। तो उसका जवाब भी याद रखना कि भाई ये जो कुल है ये सिर्फ अफराद के इहाते के लिए आता है, कुल्लु रजुलिन यानी हर आदमी, इसने रजुल के तमाम अफराद का इहाता कर लिया कि सब के लिए यही हुक्म है जो आगे जिक्र होने वाला है। तो ये जो कुल आता है ये अफराद के इहाते के लिए आता है, तो इसके बाद वो चीज जिक्र होती है जिसके अफराद का इहाता किया जा रहा है, तो गोया ये कुल से ये रजुल ही मुराद है, कोई और चीज मुराद नहीं। तो जो रजुल की सिफत है गोया वो कुल की भी सिफत है भाई, कुल से क्या मुराद है, वही जो आगे आ रहा है जो मुजाफिले है वही मुराद है, कोई और चीज मुराद नहीं, उसी के अफराद मुराद हैं। तो गोया कुल और रजुल एक ही चीज है भाई, कुल सिर्फ उसके अफराद का इहाता कर रहा है, तो जो रजुल की सिफत है गोया वो कुल की भी सिफत है। तो ये ऐसा मुब्तदा है जिसकी सिफत क्या आ रही है, लिहाजा इसमें शर्त वाला मान आया तो इसकी खबर पर फाका लाना जायज है भाई। दूसरी मिसाल लिखिए भाई, कुल्लो रजुलिन फिद्दारी, फिद्दारी फलहू दिरहमुन, फलहू दिरहमुन, कुल्लो मरफो लफजान मुजाफ, रजुलिन मजरूर लफजान मौसूफ, क्योंकि नकेरा के बाद जार मजरूर आ रहा है तो वो उसके लिए अमूमन सिफत बनता है। फी जारा अदारी मजरूर लफजन, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किस से, चाहे सबता निकालें या साबितुन, यहां जुमला होना जरूरी नहीं, तो सबता निकालें या साबितुन। अच्छा, सबता फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन, इसका फाइल जो किसको राजे, रजुल को, रजुल को, यह सिफत का रबत आ गया मौसूफ के साथ। सबता फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुजाफिले हुआ लफ्ज कुल के लिए, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुबतदा, और फलहू दिरहमुन इसकी खबर है, उसमें फिर वही तरकीब होगी जो हम पहले कर चुके भाई। आपने कुल्लु रजुलिन फिद्दार, आपने फिद्दार को किससे जोड़ा, सबता से, जरा मुफरद निकालो, कुल्लु रजुलिन फिद्दार, ये फिद्दार को मुफरद से जोड़ो, फी जारा अदारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किससे, साबितुन मुफरद से, ये जार मजरूर मिलकर किससे मुतालिक, जे हां शाबाश, तो जार मजरूर मिलकर मुतालिक होंगे साबितिन भाई, साबितुन नहीं कहना, क्योंकि अगर आप साबितुन कहेंगे तो रफा आ गया, और हालांकि ये तो सिफत बन रहा है रजुल के लिए, और मौसूफ सिफत का इराब एक होता है, रजुल मजरूर है तो लिहाजा जो उसकी सिफत साबित फिद्दार आएगी वो भी क्या होगी, मजरूर। तो क्या कहेंगे, फिद्दार जार मजरूर मिलकर मुतालिक है साबितिन सीगा इसमें फाइल से, और साबितिन मजरूर क्योंकि ये सिफत है, और इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन, इसका फाइल जो किसको राजे, मौसूफ को, और इसमें फाइल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर शिबे जुमला होकर ये सिफत रजुल के लिए, मौसूफ सिफत मिलकर ये मुजाफ इले हुआ कुल के लिए, और कुल मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुबतदा, और आगे फलहू दिरहमुन उसकी खबर। तरीका समझ में आ गया, तो लिहाजा साबित निकालेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, साबितिन, और सबता अगर आपने निकाला है कुल्लु रजुलिन सबता फिद्दार, तो ये सबता फिद्दार पूरा जुमला सिफत है किसकी, रजुल की, और रजुल क्या है, मजरूर, लिहाजा इस जुमले का महल्ले एराब क्या है, ये भी मजरूर है, क्योंकि सिफत पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर, तो जुमला चूंकि मबनी है उस पर एराब जाहिर नहीं होता, तो सबता फिद्दार पर एराब जाहिर नहीं हुआ, जर जाहिर नहीं हुआ, लेकिन साबितिन फिद्दार ये तो मुफरद है, इस पर जर जाहिर हुआ। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं वजालिकल इस्मुल मौसूल बि फिअलिन औ ज़र्फिन, और वो इसमें मौसूल है जो फेल या जर्फ के साथ हो, अविन नकिरतुल मौसूफतु बिहिमा, या वो मुब्तदा जो है ऐसा नकिरा हो जो मौसूफ हो रहा हो, बिहिमा फिल या जर्फ के साथ, मिसलु अल्लदी या अतीनी औ फिद्दारी फलहू दिरहमुन। देखो साहिब काफिया के पास अल्फाज कम होते हैं भाई, उनकी कोशिश होती है मैं मुख्तसर से मुख्तसर बात करूं, तो यहां वो दो मिसालें देना चाहते थे, एक वो इसमें मौसूल जिसका सिला फेल आए, एक वो इसमें मौसूल जिसका सिला ज़र्फ आए। चुनांचे क्या फरमाया, अल्लज़ी यातीनी, अल्लज़ी यातीनी, ये इसमें मौसूल है और यातीनी इसका सिला है। आगे क्या फरमाया, औ फिद्दारी, यहां दोबारा अल्लज़ीनी फरमाया, कहते हैं बाकी बात आप खुद समझ जाएं कि यातीनी की जगह क्या ले आए, फिद्दार ले आए, और फलहू दिरहमुन एक ही दफा खबर ले आए, कि पहले के लिए खबर आप खुद निकाल लें, तो गोया ये दरअसल दो मिसालों के दर्जे में है, गोया यूं कहा जा रहा है अल्लज़ी यातीनी फलहू दिरहमुन, तो अल्लज़ी यातीनी के लिए फलहू दिरहमुन खबर हजफ कर दी, क्योंकि आगे दूसरे जुमले की खबर फलहू दिरहमुन आ रही थी, उससे पता चल रहा था। और फिर ये दूसरे जुमले में क्या फरमाया, औ फिद्दारी, इससे अल्लज़ी को हजफ कर दिया भाई, क्योंकि एक दफा अल्लज़ी पहले जिक्र कर चुके थे। बात समझ में आ गई, तो अब आपने ये नहीं करना औ फिद्दारी, क्या फिद्दार का आतफ किस पर कर दें, या अतीनी पर, और उसी अल्लज़ी को क्या बना दें, मुब्तदा बना दें, नहीं नहीं, इस फिद्दार के लिए अलग अल्लज़ी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग मिसाल है भाई। बात समझ में आ गई, और नीस वो अल्लज़ी यातीनी उसके लिए खबर भी अलग निकाल लेंगे भाई। आगे देखिए, वकुल्लु रजुलिन यातीनी औ फिद्दारी फलहू दिरहमुन, ये भी फिर दो मिसालें हैं, कुल्लु रजुलिन यातीनी फलहू दिरहमुन एक मिसाल, और कुल्लु रजुलिन फिदारी फलहो दिरहमुन, ये दूसरी मिसाल भाई। इसके अंदर भी कुछ चीजें पहली मिसाल में जिक्र कर दी और कुछ चीजें दूसरी मिसाल में जिक्र कर दी और कुछ को हजफ कर लिया। तो यहां देखो बड़ा कीमती जाब्ता साहिब काफिया ने जिक्र फरमाया कि मुब्तदा कभी मुतजमिन होता है माना शर्त को, और वो दो किस्म के मुब्तदा हैं, एक वो इसमें मौसूल जिसका सिला फेल आए या जर्फ आए, और एक वो मुब्तदा जो नकेरा है और मौसूफ हो रहा है किसके साथ, फेल या जर्फ के साथ। तो ये मुतजमिन है माना शर्त को। और अब आप कलाम अरब में गौर करेंगे आपको बहुत मिसालें इसकी मिल जाएंगी भाई। जैसे हदीस में आता है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुआ मिनहुम, तो मन तशब्बहा ये मन मौसूला है, तशब्बहा उसका सिला, और देखो सिला फेल है तो इसके अंदर शर्त वाला माना आ गया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुआ मिनहुम, तो देखा यहां फा का लाना जायज है तो फा लाई गई। और इसी तरह मन काना लिल्लाही कानल्लाहु लहू, मन काना लिल्लाह मन मन मौसूला और मन काना लिल्लाही, ये काना फेल इसका सिला आया और तो लिहाजा इसके अंदर शर्त वाला माना, तो इसकी खबर पर फाका लाना जायज है चाहे लाएं चाहे न लाएं, तो यहां नहीं लाई गई मन काना लिल्लाही कानल्लाहु लहू। इसी तरह अस्सारिक वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, यह भी इसी की मिसाल है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीखों पर जो अलिफ लाम दाखिल हो वो दरअसल इसमें मौसूल होता है। मैंने मिसाल जिक्र की थी अज़ारिब किस माना में है, अल्लज़ी यज़रिबु, और अल-मज़रूब किस माना में है, अल्लज़ी युज़रबु के माना में है। तो अस्सारिक यह अलिफ लाम कौन सा है, अलिफ लाम इस्मी है, इसम वाला है यानी इसमें मौसूल है, और सारिक ये उसका सिला है, सिला है, तवज्जो है, फिर सुनो असारिक इसमें अलिफ लाम क्या है, इसमें मौसूल, और सारिक क्या है, इसका सिला है भाई। तो इस पर इश्काल होता है कि मौसूल का सिला तो जुमला होता है और यहां तो अलिफ लाम का सिला सिर्फ लफ्ज सारिक आ रहा है और सारिक तो मुफरद है। तो मैं जिक्र कर चुका कि अज़ारिब किस माना में है, अल्लज़ी यज़रिबु, तो यहां पर भी ये असारिक किस माना में है, अल्लज़ी यसरिकु या अल्लज़ी सरका। फिर इस अल्लज़ी को कौन सी सूरत दी गई, अलिफ लाम वाली, और अलिफ लाम तो सिर्फ मुफरद पर दाखिल होता है वो तो फेल पर दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर इस सूरत में वो जो फेल है उसको भी मुफरद वाली सूरत दे देते हैं। तो अज़ारिब दरअसल किस माना में है, अल्लज़ी यज़रिबु के माना में है। तो असारिक किस माना में हुआ, अल्लज़ी यसरिकु या अल्लज़ी सरका, तो ये इसमें मौसूल है और इसका सिला फेल आ रहा है और ये मुतजमिन होता है माने शर्त को, लिहाजा इसकी खबर पर फाका लाना जायज। तो कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, असारिकु वसारिकतु फक्तउ, देखो फा लाई गई। इसी तरह कुरान में दूसरी जगह है अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु, अज़ानियतु जी अज़ानियतु किस माना में है, हां मुअन्नस के मुताबिक निकालें अज़ानियतु अल्लती अल्लती ज़नत, अल्लती ज़नत, अल्लती ज़नत वल्लज़ी ज़ना, माजी का सीगा निकालें मुजारे का मौके के मुताबिक। और फिर एक और कीमती नुक्ता याद रखें अस्सारिकु वस्सारिकतु, इसके अंदर अस्सारिक मुजक्कर को मुकद्दम किया गया और अस्सारिका मुअन्नस को मुअख्खर किया गया, और अज़ानियतु वज़ानी इसके अंदर अज़ानिया मुअन्नस को मुकद्दम किया गया और अज़ानी मुज़क्कर को मुअख्खर किया गया। तो इसमें नुक्ता क्या है, एक में मुज़क्कर मुकद्दम है एक में मुअन्नस मुकद्दम है। वजह यह उलमा फरमाते हैं और भी बहुत सी वजूहात जिक्र की हैं उलमा ने, एक एक वजह में जिक्र कर देता हूं भाई। अस्सारिकु वस्सारिकतु इसके अंदर अस्सारिक जो मुज़क्कर है उसको मुकद्दम किया, वजह यह कि चोरी के लिए जुर्रत चाहिए भाई, चोरी के लिए क्या चाहिए, जुर्रत चाहिए, और जुर्रत मर्द के अंदर ज्यादा है, इसलिए असारिक मुजक्कर को क्या कर दिया गया, मुकद्दम कर दिया गया। और नीज इसलिए कि चोरी की जाती है माल के लिए और माल की ज्यादा हाजत मर्द को होती है, क्योंकि उसको अपने लिए भी माल चाहिए और अपने घर वालों के लिए भी माल चाहिए होता है, माश का जिम्मेदार वो होता है। तो इस वजह से वहां चूंकि माल के लिए ज्यादा तलब मर्द करता है इसलिए मुजक्कर को मुकद्दम जिक्र किया गया। और जो अजानियतु वजानी, यहां मुअन्नस को मुकदम किया गया। वजह यह कि जिना का सबब शहवत है भाई, और औरतों में शहवत ज्यादा है, इसलिए उसको मुकदम किया और मर्द को मुअख्खर। और नीज इसलिए मुकदम किया क्योंकि जिना का ज्यादा बाइस औरत बनती है भाई। औरत अगर मर्द को दावत नहीं देगी तो जिना नहीं हो सकता भाई, और औरत दावत देगी तो जिना हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो जिना में उमूमन होता ही ऐसा है कि औरत ही दावत देने वाली और सबब बनती है जिना का भाई। अब देखिए भाई सारे को शरा के साथ भाई कहते हैं वकद यतज़म्मनुल मुब्तदा उमाना शर्ती, और कभी कभार मुब्तदा मुतज़म्मिन होता है शर्त के माना को भाई। शर्त के माना को मुतज़म्मिन होता है, क्या माना शर्त का माना से क्या मुराद है? कहते हैं वह हुआ सबबी यतुल अव्वल लिसानी, वो अव्वल का सबब होना लिसानी, सानी के लिए भाई। एक है शर्त एक है जजा, तो अव्वल जो है वो सबब होता है किसके लिए? सानी के लिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं इन जरबतनी जरबतु का, अगर आप मेरी पिटाई करेंगे जरबतु का तो मैं भी आपकी पिटाई करूंगा। तो देखो इन जरब तनी, अगर आप मेरी पिटाई करेंगे यह सबब बनेगा किस चीज का? जरब तुका, कि मैं भी आपकी पिटाई करूंगा। तो अव्वल सबब होता है किसके लिए? सानी के लिए, या यूं कहो शर्त सबब होती है जजा के लिए भाई। बात समझ में आ गई? कहते हैं वह हुआ सबबियतुल अव्वल लिसानी, और वो अव्वल का सबब होना है सानी के लिए। इस पर इश्काल होता है, आगे जरा देखिए इसी सतर में आ रहा है वमा बिकुम मिन नेअमतिन फमिन अल्लाही, वमा बिकुम मिन नेअमतिन, और तुम्हारे पास जो भी नेअमत है फमिन अल्लाही, तो वो अल्लाह की तरफ से है। तवज्जो है, तुम्हारे पास जो भी नेअमत है वो अल्लाह की तरफ से है। देखो मा इसमें मौसूल आया और इसका सिला जर्फ आया बिकुम भाई, बिकुम आई मा सबता बिकुम मिन नेअमतिन, और वो इसमें मौसूल जो जिसका सिला जर्फ आए वह मुतजमिन होता है माना शर्त को, इसीलिए आगे उसकी खबर पर फा लाई गई फमीन अल्लाही आई फहुआ मीन अल्लाही, तो वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है भाई, या फसाबता मीन अल्लाही, वो अल्लाह की तरफ से साबित है। तो यहां इश्काल होता है। आपने हमें क्या कहा कि मुब्तदा कभी कभार मुतजमिन होता है माना शर्त को, शर्त का क्या माना, शर्त से क्या मुराद है? यानी अव्वल का सबब होना सानी के लिए, और यहां तो अव्वल सबब नहीं है सानी के लिए। अव्वल क्या जिक्र? तुम्हारे पास जो भी नियामतें हैं, तवज्जो है इस जुमले पे नजर रखें वमा बिकुम मिन नियामतिन, तुम्हारे पास जो भी नियामतें हैं फमीन अल्लाह, वो किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से हैं। तो वमा बिकुम मिन नियामतिन ये है अव्वल, और फमीन अल्लाह ये है सानी, और यहां अव्वल सबब नहीं है सानी के लिए। मुझे बताइए आपके पास नियामतें हैं यह सबब है अल्लाह की तरफ से नियामतें आने का? आपके पास अल्लाह की तरफ से इसलिए नियामतें आती हैं कि आपके पास नियामतें मौजूद हैं? नहीं। बात समझ में आ गई? यहां अव्वल सानी के लिए सबब नहीं है। वमा बिकुम मिन नियामतिन, और तुम्हारे पास जो भी नियामत है फमीन अल्लाह, वो किसकी तरफ से है? तो अव्वल क्या है? आपके पास नियामतों का होना, और सानी क्या है? अल्लाह की तरफ से नेमतों का आना। तो आपके पास नेमतों का होना यह सबब नहीं है अल्लाह की तरफ से नेमतों के आने का, बल्कि अल्लाह की तरफ से नेमतें आई तो यह सबब है आपके पास नेमतें होने का। तो यहां तो सानी सबब है अव्वल के लिए, अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं इसलिए आपके पास भी नेमतें हैं, अगर अल्लाह नेमतें न देते तो आपके पास भी नेमतें न होती। तो यहां पर तो अव्वल सबब नहीं है सानी के लिए, बल्कि सानी सबब है किसके लिए? अव्वल के लिए। और आपने तो हमें क्या कहा कि अव्वल सबब हो सानी के लिए, तो साहिब जामी उसका भी जवाब दे रहे हैं। देखिए भाई कहते हैं वह सबबियतुल अव्वल लिसानी, वो अव्वल का सानी के लिए सबब होना औ लिल हुक्म बिही, या अव्वल का सबब होना लिल हुक्म बिही ऐ लिल हुक्म बिसानी। हाजमीर किसको राजे? बिही की हाज अमीर सानी को राजे। औलिल हुक्म बिसानी, अव्वल का सबब होना हुक्म बिसानी का, यानी सानी के हुक्म लगाने का। देखो लिसानी को जरा हटा दें और इसकी जगह लिल हुक्म बिसानी ले आए। वह हुआ सबबियतुल अव्वल लिल हुक्म बिसानी, या वो अव्वल का सबब होना, कि अव्वल सबब है किस चीज का, हुक्म बिसानी का, यानी सानी के हुक्म लगाने का, सानी में जो हुक्म लगाया गया है अव्वल उसका सबब हो। तो बच्चों है, हुक्म लगाना यानी बात करना, यूं कहो बात करना, यानी सानी में जो बात की गई है उसका सबब अव्वल है। जरा माना पे गौर करो, वमा बिकुम मिन नियामतिन, तुम्हारे पास जो कोई भी नियामत है ये सबब है, ये अव्वल सबब है सानी के हुक्म लगाने का, कि हुक्म क्या लगाया जाए कि ये किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ। तुम्हारे पास नियामतों का होना ये सबब बन रहा है, ये बतला रहा है कि ये नियामतें किसकी तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से। तो अव्वल सबब बना किस चीज का, सानी के वजूद का या सानी के हुक्म का। सानी के हुक्म यानी यूं को सानी की बात करने का सबब बना, यानी सानी में जो बात की गई है उसका सबब अव्वल है। आपके पास नियामतें हैं, ये अल्लाह की तरफ से नियामतें आने का सबब नहीं है, ये सबब है किस चीज का, ये हुक्म लगाने का, ये बात कहने का कि ये नेमतें किसकी तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। भाई बात भी समझ में आई कि नहीं, क्या बात हुई कि अव्वल सबब है किस चीज का, सानी का या सानी के हुक्म का। तो यहां अव्वल सानी का सबब नहीं है, बल्कि अव्वल सानी के हुक्म का सबब है कि वो हुक्म लगाया गया। भाई यानी अव्वल सबब है उस बात का जो सानी में की गई है, सानी के अंदर जो हुक्म लगाया गया है अव्वल उसका सबब है। आपके पास नियामतें हैं इसलिए यह हुक्म लगाया गया कि यह किसकी तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। आपके पास खुद ब खुद तो नहीं हो सकती, लेकिन नियामतें हैं तो मालूम हो यह नियामतें किसकी तरफ से आई हैं। तो सानी के अंदर जो हुक्म लगाया गया है, जो बात की गई है, उसके लिए अव्वल सबब है। आपके पास अगर नियामतें न होती तो क्या यह कहा जा सकता था यह अल्लाह की तरफ से हैं जी? आपके पास अगर नियामतें न होती तो फिर तो यह नहीं कहा जा सकता था कि यह अल्लाह की तरफ से हैं, क्योंकि आपके पास नियामतें ही नहीं है। लेकिन चूंकि आपके पास नियामतें हैं तो यह हुक्म लगाया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि यह नियामतें किसकी तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से। तो देखा, यहां अव्वल सानी के लिए सबब नहीं है, बल्कि अव्वल सानी के अंदर जो हुक्म लगाया गया, सानी के अंदर जो बात की गई, उसका सबब है। आपके पास चूंकि ये नियामतें हैं इसलिए क्या कहा गया कि ये नियामतें अल्लाह की तरफ से हैं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह सबबियतुल अव्वल लिसानी, और वो अव्वल का सबब होना है सानी के लिए, अवलिल हुक्म भी ही, या वो अव्वल का सबब होना है सानी के हुक्म का, फला यरिदु अलैही, लिहाजा ये इश्काल वारिद नहीं हो सकता। नहवु मिसाल के तौर पर वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, यानी इस जैसी मिसाल को लेकर एतराज नहीं किया जा सकता। फयुश बिहुल मुबतदा उस शर्त, तो मुबतदा मुशाबे हुआ शर्त के, फी सबबियति ही लिल खबरी, इस बात के अंदर के वो सबब है खबर के लिए। भाई देखिए, शर्त और जजा में जो शर्त है ना वो सबब होती है जजा का, शर्त जो है वो सबब होती है जजा का। मसलन एक शख्स अपनी बीवी से कहता है इन दखलती दारा फअंती तालिकुन, इन दखलती दारा, अगर तू उस घर में दाखिल हुई, अद्दार देखो अलिफ्लाम आया, और अलिफ्लाम के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है, मालूम हुआ किसी खास घर की तरफ खावंद ने इशारा किया। इन दखलती दारा, अगर तू उस घर में दाखिल हुई, फअंते तालिकुन, तो तुझे तलाक है। तो देखो अब वो औरत उस घर में जाएगी तो ये तलाक वाके हो जाएगी। तो देखो उस घर में जाना ये सबब बनेगा किस चीज का, तलाक होने का। तो देखो अव्वल सबब है किसके लिए, सानी के लिए, यानी शर्त सबब होती है जजा के लिए। तवज्जो है? तो यहां पर भी मुब्तदा और खबर के अंदर भी मुब्तदा मुतजमिन हुआ माना शर्त को, तो वो सबब हुआ किसके लिए, सानी यानी खबर के लिए। जिस तरह के शर्त जो अव्वल है वो सबब होती है किसके लिए, जजा के लिए, जो कि सानी है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फयुश बिहुल मुब्तदा उस शर्त, तो मुब्तदा मुशाबे हुआ शर्त के, फी सबबियति ही लिल खबरी, किस चीज में मुशाबे हुआ, फी सबबियति ही लिल खबरी, इस बात में कि वो मुब्तदा सबब बन रहा है, लिल खबरी किसके लिए, खबर के लिए, का सबबियति शर्ति लिल जजाई, जैसे कि शर्त का सबब होना है जजा के लिए। तर्जमा समझ में आया? फयुश बिहुल मुबतदा उ शर्त, तो मुबतदा मुशाबे हुआ शर्त के फी सबबियत ही लिल खबरी, खबर के लिए उसके सबब होने में, कसबबियत शर्त लिल जजाई, जैसे कि जजा के लिए शर्त का सबब होना है। देखो भाई यहां लफ्ज आया फयुश बिहू, इसको युश बिहू पढ़ना भाई, बास तुलबा इसको यश बहू पढ़ते हैं, हालांकि ये मादा मुजर्रद से इस्तेमाल ही नहीं होता, मुजर्रद से यह बाब आता ही नहीं है, सुलासी मुजर्रद से यह हमेशा सुलासी मजीद फी से आएगा। अशबहा युशबिहु, इसी तरह शब्बहा युशब्बिहु, इसी तरह शाबहा युशाबिहु, तो सुलासी मजीद से इस्तेमाल होता है, सुलासी मुजर्रद से इस्तेमाल नहीं होता। तो यहां फयुशबिहु पढ़ना भाई, यशबहु ना पढ़ना। आगे देखिए फयसिहु दुखूल उल्फाई फिल खबरी, तो फा का दाखिल होना सही है खबर में। वयसिहु आदमु दुखूली ही फी ही, और अफा का दाखिल ना होना भी सही है। भाई मतन में क्या आया कि उसकी खबर में फा का दाखिल होना सही है, आगे साहिब जामी फरमा रहे हैं वैया सिख आदम दुखूल ही, तशरी कर रहे हैं फा के दाखिल होना सही है, माना क्या है कि ना दाखिल होना भी सही है, यानी यूं को फा का दाखिल करना जायज है, यानी लाजिम नहीं। तो कहते हैं वयसिहु अदमु दुखूलिहि फीहि, और उसमें फा का दाखिल ना होना भी सही है। नजरन इला मुजर्रदि तजम्मुनिल मुब्तदा इमान शर्ती, नजर करते हुए देखते हुए, इला मुजर्रदि सिर्फ इस बात की तरफ, महज इस बात की तरफ, क्या तजम्मुनिल मुब्तदा इमान शर्ती, कि मुब्तदा मुतजम्मिन है शर्त के माना को, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मुब्तदा मुतजमिन है माने शर्त को, तो इसकी खबर पर फा का दाखिल होना भी सही और दाखिल ना होना भी सही, यानी यूं को फा का दाखिल करना जायज है, यानी लाजिम नहीं, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मुब्तदा मुतजमिन है माने शर्त को, यानी वो दलालत मकसूद है या दलालत मकसूद नहीं, इसकी तरफ नजर ना करें, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करें कि मुब्तदा मुतजमिन है माने शर्त को, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करते हो कि मुब्तदा क्या है, मुतजमिन है माने शर्त को, तो फाका लाना भी जायज और ना लाना भी जायज। याद रखो दरअसल यहां इश्काल होता है, इश्काल यह होता है कि साहिब काफिया ने क्या फरमाया कि मुब्तदा जब मुतजमिन हो माने शर्त को तो उसकी खबर पर फाका लाना जायज है, तो इश्काल होता है कि नहीं भाई आपकी बात ठीक नहीं, या तो फाका लाना वाजिब होगा या फाका ना लाना वाजिब होगा, जवाज वाली सूरत या नहीं, इसलिए क्योंकि मुब्तदा मुतजमिन है माने शर्त को, तो अब मुब्तदा की इस माना पर दलालत मकसूद भी होगी या नहीं। तवज्जो है, मैंने आपसे क्या कहा अल्लदी या अतीनी फलहू दिरहमुन, यह मुब्तदा क्या है, मुतजमिन है माना शर्त को, लेकिन मेरा भी इरादा है, यानी मुतकल्लिम जो इस जुमले को अदा कर रहा है यह मुब्तदा मुतजमिन है माना शर्त को, और माना शर्त क्या है कि अव्वल सबब होता है किसके लिए, सानी के लिए, तो अगर मेरा भी यह इरादा है, मैं अव्वल को सबब बना रहा हूं किसके लिए, सानी के लिए, तो यह दलालत मेरी मकसूद हुई, जब यह दलालत मकसूद हुई तो फिर फा का लाना वाजिब है भाई, क्योंकि मैं अव्वल को सबब बना रहा हूं सानी के लिए, जैसे शर्त और जजा में शर्त क्या होती है सबब और सानी क्या होता है मुसबब, तो वहां फा लेकर आते हैं। तवज्जो है, बात क्या हुई फिर सुनो, यहां साहिब काफिया ने क्या फरमाया कि फा का लाना जायज, मोतरिज एतराज करता है कि नहीं आपकी बात हमें कबूल नहीं, फा का लाना जायज, इसका तो मतलब है चाहे फा को लाओ या ना लाओ, हालांकि यहां तो दो ही सूरतें बनती हैं, एक सूरत में फा का लाना वाजिब है और एक सूरत में फा का ना लाना वाजिब है, जवाज वाली कोई सूरत नहीं है कि आप लाएं या ना लाएं, इसलिए क्योंकि दो ही सूरतें बनती हैं, आप एक मुब्तदा लाएं और वह मुब्तदा मुतजमिन है माने शर्त को, और माने शर्त किसे कहते हैं कि अव्वल सबब होगा सानी मुसबब, तो यह दलालत मुतकल्लिम का मकसूद होगी, वो ये दलालत चाहता है या नहीं चाहता, उसने ये जुमला अदा किया है, अगर दलालत उसका मकसद है वो अव्वल को सबब बनाना चाहता है किसके लिए, सानी के लिए, तो फिर तो फा का लाना वाजिब है, फा का लाना वाजिब है, ये फा हमें बतला रही है कि अव्वल सबब है किसके लिए, सानी के लिए भाई, यानी यूं कहें सबबियत पर अगर दलालत मकसूद है तो फा का लाना वाजिब, और अगर सबबियत पर दलालत मकसूद नहीं है तो फिर फा का न लाना वाजिब है भाई। तवज्जो है, या तो मैं अव्वल को सानी के लिए सबब बना रहा हूं या नहीं बना रहा, दो ही सूरतें हैं। अगर मैं सबब बना रहा हूं तो फा का लाना वाजिब, क्योंकि यह फा बताएगी कि अव्वल सबब है किसके लिए, सानी के लिए। और अगर यह दलालत मेरी मकसूद नहीं है, मैं यहां यह नहीं बतलाना चाहता, तो फिर फा का न लाना वाजिब है भाई, क्योंकि फा लाऊंगा फिर तो सुनने वाला समझेगा कि शायद ये मकसूद है मेरा कि अव्वल सबब है सानी के लिए, हालांकि ये मेरा मकसूद नहीं। तो यहां दो ही सूरतें बनती हैं कि वो दलालत मकसूद होगी या वो दलालत मकसूद नहीं। अगर दलालत मकसूद है उस सबबियत पर तो फिर फा का लाना वाजिब, और अगर वो दलालत मकसूद नहीं तो फा का न लाना वाजिब है भाई। यहां तो जवाज वाली कोई सूरत नहीं है कि लाना भी सही और न लाना भी सही। तो साहिब जामी उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई दलालत के मकसूद होने और गैर मकसूद होने से कतई नजर सिर्फ यह देखो कि मुब्तदा मुतजमिन है माना शर्त को, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करते हुए फाका लाना भी जायज और ना लाना भी जायज। दलालत के मकसूद और गैर मकसूद होने को न देखें, सिर्फ किस बात की तरफ नजर करें कि यह मुब्तदा मुतजमिन है किसको, माना शर्त को। लिहाजा जब यह मुतजमिन है माना शर्त को तो फा चाहे तो ले आए और चाहे तो ना लाएं भाई। यानी यूं कहो, यानी कसदे दलालत है या कसदे दलालत नहीं है, इससे कतए नजर, इसकी तरफ नजर ना करें, क्योंकि कसदे दलालत है फिर तो फाका लाना वाजिब, और कसदे दलालत नहीं है तो फिर फाका ना लाना वाजिब। तो कसदे दलालत और आदम कसदे दलालत से कतए नजर सिर्फ इस बात की तरफ देखें कि मुब्तदा मुतजमिन है माने शर्त को, तो फिर बई लिहाज फाका लाना जायज है। और दलालत की तरफ नजर करें तो फिर कसद होगा तो फाका लाना वाजिब, कसद नहीं है तो फिर फाका न लाना वाजिब। तो उनसे कतई नजर महज इस बात की तरफ देखते हुए कि ये मुब्तदा मुतजमीन तो है माना शर्त को भाई, इसमें शर्त वाला माना तो है भाई, तो बई लिहाज फाका लाना भी जायज और फाका न लाना भी जायज है। यह यूं कहें कि यहां तीन सूरतें बनती हैं भाई, तीन सूरतें बनती हैं। आप अक्सर किताबों में पढ़ेंगे, जगह जगह आएगा, एक है बिशर्ती शय, एक है बिशर्ती ला शय, और एक है ला बिशर्ती शय। यह मंतिक वगैरह की किताबों में अक्सर आता है। देखो लफ्जों से ही पता चल रहा है, कोई भी चीज हो, कोई बात हो, या तो वो बिशर्ती शय होगी, उसमें किसी चीज की शर्त होगी, बिशर्ती शय होगी, एक शय की शर्त होगी उसमें, यानी एक शय के होने की शर्त होगी उसमें, या बिशर्ती ला शय होगी, यानी एक शय के न होने की शर्त होगी, और तीसरी सूरत है ला बिशर्ती शय, यानी उसमें कोई शय की शर्त है ही नहीं। ला बिशर्ती शय, ला किस पर दाखिल हो रहा है, शर्ते शय पर, यानी शर्ते शय उसमें नहीं है, इसमें चाहे वो शय हो या ना हो दोनों को शामिल है। मसलन आपका एक साथी आपकी दावत करता है, आपका एक साथी आपकी दावत करता है और कहता है भाई मैं आपकी दावत कर रहा हूं और उसमें मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, भाई दावत में चाय भी पिलाऊंगा, तो देखो ये दावत हो गई बिशर्ती शय। उसने किसको साथ जिक्र, उस शर्त का लफ्ज मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, दावत में उसने क्या जिक्र कर दिया, दावत में क्या होगा, चाय होगी, तो यह दावत हुई बिशर्ती शय, एक शय की शर्त के साथ दावत हुई कि दावत में चाय भी होगी। और एक सूरत यह है कि वो दावत करता है आपकी, वो कहता है लेकिन उसमें चाय नहीं होगी भाई, उसमें देखो चाय न होने को शर्त लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे, बिशर्ती लाश है, लाश है की शर्त लगाई है, एक शय के न होने की शर्त लगाई है। और तीसरी सूरत यह है कि वो आपकी दावत करता है और सिर्फ इतना कहता है मैं आपकी दावत करूंगा भाई, देखो ना इसमें उसने चाय के होने को जिक्र किया और ना उसके न होने को जिक्र किया, तो यह दावत है ला बिशर्ती शय, यानी इसमें किसी शय की शर्त नहीं, ना किसी चीज के होने की शर्त है ना किसी चीज के न होने की। बात समझ में आ गई, तो गोया कोई चीज जो है वो कभी कभी बिशर्ती शय होगी, कभी बिशर्ती ला शय होगी और कभी ला बिशर्ती शय होगी। तो यहां पर भी तीन सूरतें बनती हैं। कितनी सूरतें, तीन सूरतें बनती हैं। देखो मुब्तदा मुतजमिन है माना शर्त को, या और माना शर्त किसे कहते हैं कि अव्वल सबब हो किसके लिए, सानी के लिए, तो ये जो अव्वल का सानी के लिए सबब होना ये मकसूद होगा, ये दलालत मकसूद होगी या आदम दलालत मकसूद होगी या या तो दलालत मकसूद होगी या आदम दलालत मकसूद होगी या इनमें से कोई भी चीज मकसूद नहीं है, ना दलालत मकसूद है ना आदम दलालत मकसूद है। जब दलालत मकसूद हो तो फिर फाका लाना वाजिब है। जब ये दलालत मकसूद है कि अव्वल को आप क्या बना रहे हैं सानी के लिए सबब, तो उसके लिए क्या लाना वाजिब, फाका लाना। और जब आदम दलालत मकसूद हो, आप अव्वल को सानी के लिए सबब नहीं बनाना चाहते, तो फिर फाका न लाना वाजिब है। और जब न दलालत मकसूद है न आदम दलालत मकसूद है, तो ये वो तीसरी सूरत है कि मुब्तदा बहरहाल मुतजमिन तो है माना शर्त को, दलालत मकसूद होती तो फाका लाना वाजिब था, और आदम दलालत मकसूद होती तो फाका न लाना वाजिब था, लेकिन यहां आपका कोई मकसूद नहीं है, न दलालत न आदम दलालत, तो इस सूरत में बहरहाल मुब्तदा मुतजमिन तो है माना शर्त को, तो फिर फाका लाना भी जायज और ना लाना भी जायज। तो साहिब काफिया ने यह तीसरी सूरत यहां जिक्र की है कि जब न दलालत मकसूद हो ना आदम दलालत मकसूद हो, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करें कि मुब्तदा मुतजमिन है माना शर्त को, लिहाजा उस पर फाका लाना जायज है। भाई दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि यहां इम्कान खास मुराद है। क्या मुराद है? इम्कान खास मुराद है। भाई आप मंतिक में पढ़ चुके हैं, एक है इम्कान आम और एक है इम्कान खास। इम्कान आम कहते हैं जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, यानी जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं, जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं। देखो एक है एक चीज का होना, एक है एक चीज का न होना, यह होना और न होना एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तवज्जो है, एक है चीज का होना और एक है चीज का ना होना, एक वक्त में एक ही होगा, या होना होगा या ना होना होगा भाई, तो ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो इम्कान आम में इम्कान जिक्र किया जाता है कि हो सकता है, मुमकिन है। मसलन देखो भाई, मैं आपसे कहता हूं कि हो सकता है जैद अभी आ जाए, मुमकिन है जैद अभी आ जाए, तो मैं किसको जिक्र कर रहा हूं? इम्कान को। तवज्जो है, इम्कान को जिक्र कर रहा हूं। तो देखो इसमें मैं जैद के आने को जिक्र कर रहा हूं, तो जानिब मुखालिफ क्या? न आना। तो ये इम्कान आम है, इसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है। मैं आने को जिक्र कर रहा हूं, तो जानिब मुखालिफ क्या? न आना। मालूम हुआ न आना जरूरी नहीं, न आना। अगर न आना जरूरी होता फिर मैं ये नहीं कह सकता था हो सकता है जैद अभी आ जाए। मसलन फर्ज करो जैद अमरीका में है, जैद कहां पर है? अमरीका में है, तो फिर कभी मैं कहूंगा हो सकता है अभी जैद आ जाए जी, क्योंकि अब उसका न आना जरूरी है भाई। मतलब इतनी दूर है कि यहां वो अब पहुंच ही नहीं सकता भाई। या यूं दूसरी मिसाल लो, अमेरिका की मिसाल भी ना लो, वहां भी एहतमाल है हो सकता है वो सफर करके आ रहा हो रास्ते में आ जाए। बल्कि फर्ज करो जैद मर चुका है, जैद मर चुका है, जब मर चुका है तो फिर कभी मैं कहूंगा कि हो सकता है जैद अभी आ जाए? क्यों? जैद के आने का इम्कान मैं क्यों नहीं जिक्र कर सकता? क्योंकि जानिब मुखालिफ यानी जैद का न आना जरूरी है, लाजमी है भाई, क्योंकि वो मर चुका है, वो आ ही नहीं सकता भाई। तवज्जो है, एक चीज के होने को मैं तभी जिक्र करूंगा जब उसका न होना जरूरी ना हो। अगर न होना जरूरी है फिर मैं नहीं कह सकता। जैद जिंदा है तो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है अभी जैद आ जाए, क्योंकि उसका न आना जरूरी नहीं। और अगर जैद मर चुका है अब तो उसका न आना जरूरी है, लाजमी है, वो आ ही नहीं सकता, तो अब मैं कभी भी नहीं कहूंगा हो सकता है जैद आ जाए, आने को जिक्र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जानिब मुखालिफ जरूरी है, यानी न आना जरूरी है क्योंकि वो मर चुका है भाई। बात समझ में आ गई? तो इम्कान आम किसे कहते हैं? जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। आना, आने के मुखालिफ क्या? न आना। खाने का मुखालिफ क्या? न खाना। पीने का मुखालिफ क्या? न पीना। चलने का मुखालिफ क्या? न चलना। तो जब एक चीज जिक्र होगी, जब एक चीज का इम्कान जिक्र होगा, तो उसकी जो जानिब मुखालिफ है उसका होना जरूरी नहीं, तभी यह इम्कान जिक्र किया जाएगा। मसलन फर्ज करो, फर्ज करो एक पत्थर है पूरे कमरे जितना बड़ा है, अब मुझे बताइए जैद इसको उठा सकता है या नहीं उठा सकता? जाहिर सी बात है जैद नहीं उठा सकता। मालूम हुआ इसको न उठाना जैद के लिए जरूरी है, लाजिम है, वो इसको नहीं उठा सकता। जब जैद के लिए इसका न उठाना जरूरी है, लाजिम है, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा भाई हो सकता है जैद इसको उठा ले। ये हो सकता है, वो इम्कान जिक्र कर रहा हूं ना, ये इम्कान तभी जिक्र किया जाता है जब जानिब मुखालिफ जरूरी ना हो भाई, जब जानिब मुखालिफ जरूरी ना हो भाई। और जब जानिब मुखालिफ जरूरी है फिर इम्कान नहीं जिक्र किया जा सकता। जैद उस पत्थर को नहीं उठा सकता तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि हो सकता है जैद इसको उठा ले भाई, भाई इतना बड़ा पत्थर तो मुमकिन ही नहीं है वो उठा ले। क्यों? क्योंकि इसका न उठाना लाजिम है, जरूरी है। बात समझ में आ गई? ये और मिसाल ले लो, मसलन देखो सूरज मशरिक से निकलता है, मशरिक से निकलता है और शुमाल से इसका निकलना मुमकिन है, शुमाल से निकलना मुमकिन नहीं। जब मुमकिन नहीं तो मैं कभी नहीं कहूंगा हो सकता है आज सूरज शुमाल से निकल आए। क्यों? क्योंकि जानिब मुखालिफ जरूरी है। जानिब मुखालिफ क्या? हां 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 हां, शुमाल से न निकलना, इसी में नफी लेकर आओ। मैंने किसको जिक्र किया? शुमाल से निकलने को। इसकी जानिब मुखालिफ क्या? शुमाल से न निकलना जरूरी है, लाजमी है, शुमाल से वो निकल ही नहीं सकता। तो इम्कान तभी जिक्र किया जाता है जब जानिब मुखालिफ जरूरी ना हो। अगर जानिब मुखालिफ जरूरी हो फिर इम्कान जिक्र नहीं किया जा सकता भाई। शुमाल से सूरज का निकलना जरूरी है, लाजमी है, यहां से वो निकल ही नहीं सकता। लिहाजा मैं कभी भी नहीं कह सकता हो सकता है सूरज आज शुमाल से निकल आए। बात समझ में आ? तो इम्कान आम किसे कहते हैं? जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। और जानिब मुखालिफ क्या माना? एक चीज का होना जिक्र है तो उसके मुखालिफ क्या? न होना। अगर होना जिक्र है तो उसकी जानिब मुखालिफ है न होना, और अगर न होना जिक्र कर रहे हैं तो इसकी जानिब मुखालिफ क्या है? होना भाई। तो जो भी चीज जिक्र की जाए, चाहे होना चाहे न होना, इसमें इम्कान तभी आएगा, इसका इम्कान तभी होगा जब इसकी जानिब मुखालिफ जरूरी ना हो भाई। बात समझ में आ? यह था इम्कान आम भाई, इसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है। और एक है इम्कान खास। इम्कान खास में जानिबैन से जरूरत की नफी होती है, दोनों जानिब से जरूरत की नफी। न होना जरूरी और ना न होना जरूरी भाई, न होना जरूरी। इम्कान खास उसमें दोनों जानिब से जरूरत की नफी होती है, न होना जरूरी और ना न होना जरूरी। मसलन एक पत्थर है, 50 सेर का पत्थर है भाई, 50 सेर। अब देखो इसमें एहतमाल है, हो सकता है जैद इसको उठा ले, हो सकता है जैद इसको ना उठा सके भाई। मसलन मैं कहता हूं हो सकता है जैद इस पत्थर को उठा ले, उठाने की जानिब मुखालिफ क्या? ना उठाना। मालूम हुआ ना उठाना जरूरी नहीं, वरना मैं ये नहीं कह सकता था। और हो सकता है जैद इस पत्थर को ना उठाए, ना उठाने की जानिब मुखालिफ क्या? उठाना। मालूम हुआ उठाना जरूरी नहीं, हो सकता है उठाए, हो सकता है ना उठाए, एक भी जानिब जरूरी नहीं है। चाहे आप उठाने को जिक्र करें चाहे ना उठाने को, उसकी जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? इम्कान खास कहते हैं। तो इम्कान आम में एक जानिब, देखो कलाम में एक चीज जिक्र करेंगे या होना या न होना, तो जानिब मुखालिफ से अगर जरूरत की नफी हो तो इसको क्या कहते हैं? इम्कान आम। होना जिक्र है तो उसकी जानिब मुखालिफ क्या? न होना। और न होना कलाम में जिक्र है तो इसकी जानिब मुखालिफ क्या? होना। तो इसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है तो इसको इम्कान आम कहते हैं। और अगर दोनों जानिब से जरूरत की नफी हो तो इसको इम्कान खास कहते हैं। अब देखिए भाई यहां पर आया कि उसकी खबर पर, ऐसे मुब्तदा की खबर पर फाका लाना सही है यानी जायज है, यह इम्कान खास मुराद है। यह क्या है? इम्कान खास मुराद है। क्या माना? फाका लाना भी जायज और न लाना भी। तवज्जो है? तो जब फाका लाना जायज है मालूम हुआ जानिब मुखालिफ यानी न लाना जरूरी नहीं। और अगर कहें कि फाका न लाना भी जायज है तो फा न लाने की जानिब मुखालिफ क्या? फाका लाना। मालूम हुआ फाका लाना भी लाजिम नहीं। अगर फाका लाना लाजिम होता फिर हम ये नहीं कह सकते थे फाका लाना जायज। तो इसमें दोनों जानिबें बराबर हैं। मालूम हुआ फाका लाना भी लाजिम नहीं और न लाना भी लाजिम नहीं। भाई देखो तीन सूरतें थी ना, एक सूरत क्या थी? या तो यह दलालत मकसूद होगी कि अव्वल सानी के लिए सबब है, या यह दलालत मकसूद नहीं होगी। अगर यह दलालत मकसूद है तो फिर फाका लाना लाजिम है। देखो लाना लाजिम है, लाना लाजिम है। और अगर दलालत मकसूद नहीं तो फिर फाका ना लाना लाजिम है। देखो इन दो सूरतों में एक एक चीज लाजिम हो रही है, एक एक चीज लाजिम है, लेकिन जवाज वाली सूरत में कोई एक भी चीज लाजिम और जरूरी नहीं। मालूम हुआ ये क्या जिक्र है? इम्कान खास। क्योंकि इम्कान खास में होना और ना होना दोनों में से एक भी जरूरी नहीं होता। दोनों मुमकिन होते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी इम्कान खास मुराद है, इम्कान आम मुराद नहीं है। दलालत मकसूद होगी या दलालत मकसूद नहीं, उनमें इम्कान आम मुराद है। दलालत मकसूद है तो फाका लाना लाजिम, मालूम हुआ न लाना जायज नहीं, और दलालत मकसूद नहीं तो फिर फाका न लाना वाजिब है, मालूम हुआ फाका लाना जायज नहीं। तो वहां देखो एक एक जानिब जरूरी है, जबकि यहां पर दोनों जानिबें, दोनों जानिबों से जरूरत की नफी है, न फाका लाना लाजिम न फाका न लाना लाजिम, तो इसमें इम्कान खास मुराद है। बात समझ में आ गई? तो महज इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मुब्तदा मुतजमीन है माने शर्त को, तो यहां मालूम हुआ ला बिशर्ती शय मुराद है। भाई क्या मुराद है? ला बिशर्ती शय मुराद है, या यूं कहें कि यहां पर इम्कान खास मुराद है। एक है इम्कान आम और एक है इम्कान खास। इम्कान आम में जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है, मसलन होना जिक्र है तो उसकी जानिब मुखालिफ क्या? न होना। और अगर न होना जिक्र है तो उसकी जानिब मुखालिफ क्या? होना। इम्कान आम में एक चीज के इम्कान जिक्र किया जाता है कि यह मुमकिन है, और ये उसी वक्त कहा जाता है जब जानिब मुखालिफ जरूरी ना हो, लाजिम ना हो। अगर जानिब मुखालिफ लाजिम हो, जरूरी हो, फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुमकिन है। तो वो सूरत जिसमें दलालत मकसूद हो उसमें फाका लाना वाजिब है, और वो सूरत जिसमें दलालत मकसूद नहीं उसमें फाका न लाना वाजिब है। तो देखो उसमें एक जानिब लाजिम है, जरूरी है, तो वहां पर वो इम्कान आम मुराद है, और यहां पर इम्कान खास मुराद है, और इम्कान खास में दोनों जानिबें बराबर होती हैं, होना भी लाजिम नहीं और न होना भी लाजिम नहीं, तो वो यहां पर मुराद है। बात समझ में आ गई? फिर तर्जमा सुने, कहते हैं फयसिहु दुखुलुल फाई फिल खबरी, तो सही है फा का दाखिल होना उस खबर में, वयसिहु अदमु दुखुलिही फीही, और उस खबर के अंदर फा का दाखिल ना होना भी सही है, यानी दोनों सूरतें जायज हैं। नजरन इला मुजर्रदी तजम्मुनिल मुब्तदा इमान शर्ती, इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मुब्तदा जो है वो शर्त के माना को मुतजमीन है, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मुब्तदा माने शर्त को मुतजमीन है, यानी दलालत मकसूद है या दलालत मकसूद नहीं इसकी तरफ नजर किए बगैर, सिर्फ इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मुब्तदा मुतजमीन है माने शर्त को, तो कहते हैं नजरन इला मुजर्रदी तजम्मुनिल मुब्तदा इमान शर्ती। मुजर्रद का तर्जमा करेंगे महज के साथ, महज। नजरन इला मुजर्रदी तजम्मुनिल मुब्तदा इमान शर्ती, महज मुब्तदा के मान शर्त को मुतजमिन होने की तरफ नजर करते हुए। तर्जमा समझ में आया? तर्जमा नजरन इला मुजर्रदी तजम्मुनिल मुब्तदा इमान शर्ती, महज इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मुब्तदा मुतजमिन है शर्त के माना को। व अम्मा इदा कुसिदत दलालत अला दालिकल माना फिल लफ्ज़ी, और जब इरादा किया जाए उस माना पर दलालत का, और जब उस माना पर दलालत का इरादा भी किया जाए फिल लफ्ज़ी, लफ्जों के अंदर, के लफ्जों के अंदर भी उस पर दलालत हो जाए कि यह माना मकसूद है, यानी अव्वल को आप सबब बनाना चाहते हैं किसके लिए? सानी के लिए। फयजिबु दुखुलुल फाइफी ही, तो उसके अंदर फा का दाखिल होना वाजिब है भाई, क्योंकि आप लफ्जों में दलालत करना चाहते हैं कि अव्वल सबब है सानी के लिए। वह अम्मा इदा लम तुकसद, और बाकी जब ये वो दलालत मकसूद न हो, फलम यजिब दुखूलुहू फीही, तो फिर उस खबर पर फाका दाखिल करना वाजिब नहीं है, बल यजिबु आदमुहू, बल्कि आदम दुखूल जो है वो वाजिब है, बल्कि फिर उस फाका दाखिल न करना वाजिब है जब वो दलालत मकसूद नहीं है। और जबकि तीसरी सूरत यह है कि न दलालत मकसूद है न आदम दलालत मकसूद है, तो सिर्फ इस बात की तरफ अगर देखें कि मुब्तदा में बहरहाल मुब्तदा मुतजमिन तो है माना शर्त को, चाहे मकसूद है चाहे मकसूद नहीं, तो लेकिन मुतजमिन तो है माना शर्त को, तो उसकी तरफ नजर करते हुए फाका लाना भी जायज है और फाका न लाना भी जायज है। भाई बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।